मैंने शिकार पर जाना निरस्त कर दिया ताकि मैं प्रभु की सेवा करता रहूं। इसलिए ये हम यहाँ पर होकर आनंदित हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि पिछली बार यहाँ मैंने आपको बताया, हर बार मैं आता हूँ वहाँ कोई नहीं है, और यदि हम अगले वर्ष वापस आएंगे प्रभु रुका रहा तो वहाँ कोई नहीं होगा। कोई मेरे हृदय आत्मा के बहुत ही समीप था, वो भाई लॉयल थे। भीतर आते हुए मेरा सदा से स्वागत रहा है। वहाँ पीछे खड़े होकर सुनना भाई जैक के अध्ययन में पुराने समूह गान का गाना गाना, आज रात्रि वे महिमा में गा रहे हैं। भाई वहाँ पहले ही वो आवाजें वहाँ हैं, दूसरे तीन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मैं उन्हें यहाँ पृथ्वी पर अब और कभी नहीं सुनूंगा, परंतु मैं निश्चय ही प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि इसे फिर सुनूं। भाई बहन मूर यहाँ हैं, उस देश में जहाँ वे होंगे ये कभी धूमिल नहीं होगा। भाई पामर मसीह के महान सेवक हैं। मैं स्मरण कर सकता हूँ भाई जैक मूर अपना समर्पित जीवन परमेश्वर के लिए बता रहे थे। वे एक साथ बड़े थे और कहा वो अपना दोपहर का भोज खाएंगे, अपना सैंडविच अपने हाथ में लेकर सैंडविच खा रहे थे और अपनी बाइबल पढ़ रहे थे। देखा उन्होंने कुछ बड़ा महान कार्य किया है, भाई पामर ने किया है। वो अच्छे बड़े ही हैं, अपने बालकों के लिए अच्छे पिता, एक सुंदर परिवार, उसने उनका पालन पोषण प्रभु की सेवा के लिए किया है। जहाँ तक मैं जानता हूँ वे सब बचाए हुए हैं और पवित्र आत्मा से भरे हैं, और आज के दिन में किसी भी मनुष्य का ये महान योगदान है, लड़के और लड़कियाँ। परंतु देखिए वो सब जो उन्होंने कभी किया वो अधिक नहीं होगा जब तक परमेश्वर की सेवा ना करें। ऐसा हो कि उसने परमेश्वर की सेवा की और आज रात्रि जो उसने यहाँ पृथ्वी पर किया उसके भले कार्य वो अपने पुरस्कार को लेने के लिए गया कि उनके संग हो जाए। परमेश्वर हमारे भाई की आत्मा को विश्राम दे। मैं जानता हूँ जब तक यहाँ ये आराधनालय है, मैं जानता हूँ वो उसकी आवाज अब भी यहाँ पर है। बहन एनर्जीन और उनकी बहन ऑर्गन और पियानो बजा रही है। कैसे उन्होंने कभी प्रतीक्षा नहीं की। भाई पामर वहाँ खड़े होते और गीत को उठाते और आगे बढ़ते, वे इसे पकड़ती और मैंने कभी नहीं, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि उन्हें गीत की अगुवाई करते सुनूं। उसके बालक, उसकी पत्नी को और भाई जैक, उसका प्रिय मित्र, वे इन वर्षों में मित्र रहे, और भाई ब्राउन, बहन ब्राउन और आप सब आराधनालय के लोग, परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं भी उनकी कमी को अनुभव करता हूँ। परमेश्वर उसकी वीर प्राण को विश्राम दे जब तक हम उनसे शांति में न मिले। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, इस महान सेवक के विषय में मैं आज रात्रि, मैंने उसे नहीं पाया, उससे अपने हाथ मिलाते हुए और वो छोटी सी समझदारी वाली मंद मुस्कान जो मुंह पर सदा रहती थी जब उसने कहा भाई ब्रैनम परमेश्वर आपको आशीष दे, जब वो दरवाजे के भीतर आता मैं जानता हूँ आज रात्रि वो आपके घर आ गया है। इसलिए प्रिय परमेश्वर कि आप उसके फलों को होने देंगे, उसके कार्य उसके पीछे आने देंगे, महान हो, उसके बालकों बालकों के साथ उसकी पत्नी के संग निरंतर चलते रहें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप बहन को आशीषित करें। आपने कहा आप एक पति होंगे विधवाओं के जो वास्तव में विधवाएं हैं। मैं हमारी बहन पामर के लिए प्रार्थना करता हूँ और सारे बालकों के लिए। मैं जानता हूँ कि कैसे उन दोनों के साथ सहानुभूति रखूं, एक साथी को खोते हुए और अपने पिता को भी खोते हुए। इसलिए पिता, जबकि आज रात्रि हम यहाँ पर हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे हृदयों को भी तैयार करेंगे उस घड़ी के लिए। हम नहीं जानते ये हम पर अकस्मात आ सकता है जैसे उसका हुआ। हम नहीं जानते ये कब होगा, परंतु हम जानते हैं कि इसे आना ही है। इसलिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि आज रात्रि आप प्रत्येक हृदय को खोजेंगे। परमेश्वर मेरे वाले को मत छोड़ना, मेरे हृदय को भी खोजें और जांचें। प्रभु यदि हम में कुछ बुराई हो तो उसे निकाल दें। हम तेरी सेवा करना चाहते हैं, यही हमारा सारा उद्देश्य है कि आपकी सेवा करें। अपने आत्मा को आज रात्रि हम पर उंडेलें और इस बाकी सप्ताह इस आराधनालय को जीवन का आराधनालय नाम से आशीषित करें। इस नाम की ये पूरी पूरी आशीषें पाएं और परमेश्वर के जीवन से भरा रहे। इस सप्ताह की हर खोए प्राण को बचाएं, हर विश्वासी को पवित्र आत्मा से भरें, हम में प्रभु आशाओं को ताजा कर दें फिर से। हम प्रार्थना करते हैं कि आप सारे रोगियों को चंगा करेंगे, और दुखियों को जो हमारे मध्य में हैं, होने पाए आपका महान पवित्र आत्मा प्रभु यहाँ हो और चंगा करे और प्रत्येक विश्वासी का अभिषेक करे। पिता इन बातों को प्रदान करें। अब परमेश्वर मेरी सहायता करें, यदि ये आता है, मेरी बारी आती है कि संदेश लाऊं। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मनुष्य के भाग को एक और खड़ा कर देंगे और पवित्र आत्मा भीतर आए और प्रभु हमारे ऊपर मंडराए। प्रभु पवित्र आत्मा ही सभा को ले। हम जानते हैं कि हम इतने अयोग्य हैं कि हम नहीं कर सकेंगे, हम में से कोई भी नहीं, हम इसे करने का दावा नहीं करते, परंतु प्रभु हम जानते हैं कि आप ही हैं, इसलिए हम तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रभु परमेश्वर का आत्मा मंडराए और हम पर ताजगी से उतरे, हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब मैं चाहता हूं कि शुभकामनाएं उन सारी कलीसियाओं को जो समस्त प्रांत में हैं पहुंचे, जो प्रातः में संचार व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। हम टेलीफोन से जुड़े हैं, जो कि एक अच्छी व्यवस्था है, जिसे कि हम अपने भाई पेरी ग्रीन के द्वारा पाने योग्य हुए हैं, बे माउंट टेक्सास से, और कलीसियाएं जो पूरी रीति से संदेश का अनुकरण कर रही हैं, सारे संयुक्त राज्य में जो आज रात्रि जुड़े हुए हैं। हम शुभकामनाएं भेजते हैं ऊपर नीचे पश्चिमी किनारे वैंकूवर से नीचे तेजुआना मेक्सिको सैन जोस से लॉस एंजलिस वहां के सारे झुंड। हम आपको शेरपोर्ट से शुभकामनाएं देते हैं, प्रेसकोट एरिजोना से उस झुंड को जो वहां प्रभु पर निर्भर करता है। हम आपको शुभकामनाएं भेजते हैं और टूसान को सेरा विस्टा को भी सबको न्यूयॉर्क को ऊपर नीचे सब जगह सारे राष्ट्र में प्रभु आपको आशीष दे। प्रत्येक को इच्छा है कि आज रात्रि आप यहां होते और ये सुंदर पुराना प्रांत लुजियाना का जहां मुझे अपना दूसरा घर लगता है। मैं आप जानते हैं आप लोग जो न्यूयॉर्क में हैं, आप स्वयं अपने पर सब प्रकार का उपहास करते हैं जिस प्रकार आप बोलते हैं आज रात्रि मैं ठीक अपने घर में हूं। हां, हर कोई यहां पर आप जानते हैं उन्होंने कहा हेलो प्रिय भाई बर्नम, आप बहन बर्नम और सब छोटे छोटों को लाए हैं और हमसे मिलने आए हैं। ओ, ये मुझे अच्छा लगता है, ये मेरे लिए वास्तविक अंग्रेजी है। पूर्व और उत्तर में आप लोगों के अपमान में नहीं और विभिन्न स्थानों में, परंतु आप जानते हैं मैं समझता हूँ, मैं उस पुराने में जन्मा हूँ और इसी प्रकार से ही रहना है। मुझे ये पसंद है अपने में, ये वास्तविक अंग्रेजी है। मैं व्यापारियों के नाश्ते पर था, यहाँ अधिक समय नहीं हुआ और उन्होंने कहा अब हम खड़े होंगे और राष्ट्रीय गान गाएंगे, और मैंने खड़े होकर कहा अपने पुराने केंटकी घर के लिए जो दूर है, मेरे लिए वही राष्ट्रगान था जो मैं इसके विषय में जानता हूँ, इसलिए मैं शुभकामनाएं भेजता हूँ। अब मैं विश्वास करता हूँ कि वे इस नाश्ते की सभा का प्रसारण करने का यत्न कर रहे हैं। व्यापारी लोगों का नाश्ता शनिवार प्रातः भाई ग्रीन आपको बताएंगे, जैसे कि अब वो वहाँ बाहर माइक पर हैं, इसलिए वो आपको बताएंगे कि नाश्ता किस समय आरंभ होगा और किस समय प्रत्येक रात्रि इस पर मिलाएं। हम आपके धन्यवाद और आभारी हैं, हमारे लिए प्रार्थना करें। अब यहाँ की आम सभा और भाई जैक का आराधनालय, मैं आपसे आज रात्रि एक सहयोग मांगता हूँ। ये होने के नाते मैं आपको अपना धन्यवाद का संदेश देना चाहता हूँ सारे राष्ट्र में, अपने आसपास की कलीसियाओं में जो संदेश का अनुकरण करती हैं। इसमें मैं थोड़ा लंबा हो सकता है और तब फिर से मैं कोई शिक्षा प्रचार कर सकता हूँ। यदि ऐसा हो तो और आप इसके साथ सहमत नहीं हैं, जैसे कि मैंने सदा चेरी का मुरब्बा खाने के विषय में कहा, जब बीज आते हैं तो मैं मुरब्बा फेंक नहीं देता, मैं बीज फेंकता हूँ और मुरब्बा खाता चला जाता हूँ। इसलिए यदि आज रात्रि ऐसा हो कि मैं किसी चीज का उल्लेख करूँ, मैं ये भी एक कारण है कि आज रात्रि मैंने ये निमंत्रण लिया है कि यहाँ हूँ कि अपना धन्यवाद का संदेश लाऊं उन सारे झुंडों के लिए जो समस्त राष्ट्र में हैं, क्योंकि भाई जैक सदा स्वतंत्रता से अपना द्वार खोलते हैं और वे कहते हैं जो आपके हृदय में है प्रचार करें, इसलिए मैं स्वयं को घर में अनुभव करता हूँ। इसलिए ये यहाँ हो सकता है स्थानीय सभा में, यहाँ भाई जैक के साथ कुछ सेवकगण और कुछ लोग हो सकते हैं जो शिक्षा से असहमत होंगे। अधिकांश मैं निमंत्रण देने वाले के प्रचार मंच से शिक्षा प्रचार नहीं करता जो मुझे बोलने को बुलाता है, इसलिए आज रात्रि के पश्चात मैं समझता हूँ मैं बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ और नियमित सभाएं कर रहा हूँ, परंतु मैंने सोचा कि आपको पहले ही बता दूँ यदि मैं कुछ कहूँ जो असहमति वाला हो सकता है क्यों उसे मेरी अज्ञानता में होने दे। मैं सोचता हूँ और अधिक अच्छा नहीं जानता। मेरे लिए प्रार्थना करें। इसलिए अब वचन का एक अध्याय निकालें। मैं आज रात्रि बहुत स्थानों से उल्लेख करने जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत से लेख हैं और टिप्पणियाँ लिखी हुई हैं यहाँ चिट्ठों पर। पहली बार मुझे स्मरण है मैं लाइफ आराधनालय में प्रचार मंच पर चढ़ा 20 वर्ष पहले। मुझे अपने पवित्र लेख और संदर्भ नहीं लिखने पड़ते थे। मैं अब से 20 वर्ष छोटा था, परंतु अब मैं अपने 25 वर्ष बिता चुका, इसलिए मैं दूसरी बार, इसलिए मुझे स्मरण नहीं रख सकता जैसे हुआ करता था। मुझे अपने पवित्र वचन लिखने होते हैं और कभी कभी दूसरे छोटे लेख लिखने पड़ते हैं जिनका उल्लेख करना चाहता हूँ। अब प्रभु आशीष दे जब हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ते हैं और रोमियो की पुस्तक 7वां अध्याय। अब मैं चाहता हूँ कि संडे स्कूल के पाठ के समान पढ़ाऊँ। मैं जानता हूँ वहाँ लोग खड़े हैं और आराधनालय में अक्सर जेफरसन विले में हम आज रात्रि आप सबको शुभकामनाएं देना चाहते हैं। जानता हूँ कि आराधनालय में संचार व्यवस्था से जुड़े हैं। प्रतीत होता है कि आराधनालय पर आज रात्रि यदि आप यहाँ ये लोग दीवारों के साथ साथ और बाहर तक हैं, अब मैं समझता हूँ कि अब भी उसी प्रकार से है। सारे लोग जो राष्ट्र के उस भाग में हैं, जो संदेश के लिए आए हैं। अब हम संडे स्कूल के पाठ के समान करने जा रहे हैं और ये किसी भी विशेष व्यक्ति या किसी दिशा या किसी चीज की ओर निर्देशित नहीं है, केवल कलीसिया को मसीह की देह जिसकी अगुवाई गहरे विचारों की ओर ले जाने को कर रहे हैं और ऊंचे उद्देश्य, ये विश्वास करते हुए कि प्रभु यीशु का आगमन समीप है। हम विश्वास करते हैं कि ये 20 वर्ष पहले से अधिक समीप है जो पहले बार था मैं शेरपोर्ट में आया था। ओ, उस समय से ये बहुत कुछ घटित हुआ है। अब हम अपनी पीढ़ी में प्रभु के आगमन की राह देख रहे हैं। मैं अपनी पीढ़ी में बेदारी की राह नहीं देख रहा हूँ, मैं अपनी पीढ़ी में प्रभु के आने की राह देख रहा हूँ। अब रोमियो 7 में विश्वास करता हूँ कि आपने अपनी बाइबलें खोल ली हैं। अब हर कहीं समस्त राष्ट्र में हम अब ध्यान से पढ़ना चाहते हैं। ये संदेश यहाँ पर है, ये प्रतीत होता है कि जैसे ये विवाह और तलाक पर है, परंतु वास्तव में ये नहीं है। मेरे लिए ये कलीसिया के लिए भविष्यवाणी है अंतिम दिनों में। आइए हम पढ़ें। हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूँ कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है। क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है, परंतु यदि पति मर जाए तो वो पति की व्यवस्था से छूट गई। सो यदि पति के जीते जी वो किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी, परंतु यदि पति मर जाए तो वो उस व्यवस्था से छूट गई, यहाँ तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी व्यभिचारिणी न ठहरेगी। सो हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए ताकि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थीं, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी, परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर और व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेखे की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। और अब हम प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, हमने जो पढ़ा है जिसका कि हम परमेश्वर का पवित्र वचन होने का विश्वास करते हैं, और यही जो हम विश्वास कर रहे हैं कि एक बिंदु या एक उपनाम किसी भी प्रकार से नहीं टलेगा जब तक कि पूरा ना हो जाए। और हम विश्वास करते हैं कि हमारे प्रभु ने हमें प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय में बताया कि जो भी इसमें से एक शब्द भी निकाले या इसमें एक शब्द मिलाएगा, उसका वही भाग जीवन की पुस्तक में से ले लिया जाएगा। और हम देखते हैं कि वचन के गलत प्रस्तुतिकरण के द्वारा, जैसे कि शैतान ने हवा के सामने गलत प्रस्तुत किया, एक वचन पर संदेह का कारण हुआ, समस्त मानव जाति दुर्व्यवस्था में गिर गई, केवल एक शब्द। तब हम पुस्तक के बीच में देखते हैं हमारा प्रभु और बचाने वाला आता है। इस विषय में हमें ये अवतरण दिया, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जिएगा, परंतु हर वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। तब प्रभावशाली चेतावनी प्रकाशित वाक्य अंतिम पुस्तक यीशु मसीह का जो है, जो भी एक शब्द मिलाएगा या एक शब्द निकालेगा, उसका भाग जीवन की पुस्तक में से निकाल दिया जाएगा। ओ परमेश्वर, जानते हुए, देखते हुए कि हम कितने निर्बल हैं, जानते हुए कि जीवन के कच्चे धागे पर चल रहे हैं इस मरणहार जीवन में, ये न जानते हुए कि हमें वहाँ ऊंचे पर उत्तर देने के लिए कब बुलाया जाने वाला है, ओ प्रभु, हमारे हृदय से हर चीज एक ओर रख दें और हमारे मस्तिष्क से हर चीज, और आज रात्रि सीधे आपके वचन को देखें और आपके आगमन के लिए और जीवित देववाणी से इसे अनुवाद करें, इसे स्वीकार करें। आपका पवित्र आत्मा हम पर उतरे और वचन को हमारे हृदय में अभिषिक्त करे, ताकि हम इस सांझ यहाँ से जा सकें अब से अच्छे मनुष्य होकर, ताकि यीशु मसीह को समीप से देख सकें। इसे प्रदान करें प्रभु, ताकि हम समझ सकें जिस दिन में हम रह रहे हैं और इस घड़ी में परमेश्वर अपने लोगों को तैयार करे, ये संकट भरा अंधेरे का समय जिसमें अब हम रह रहे हैं। परमेश्वर इसे अभिषिक्त करें, केवल बोलने वाले को ही नहीं, परंतु सुनने वालों को, और कुल मिलाकर हमारा हृदय आपके वचन से भययुक्त हो, क्योंकि परमेश्वर का भय बुद्धि का आरंभ है। पिता, इन बातों को स्वीकार करें, क्योंकि हम ये यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं इन कुछ टिप्पणियों को जो मैं यहाँ करने जा रहा हूँ, ये शीर्षक देना चाहता हूँ, और कुछ पवित्र वचन जिनको मैं पीछे से देना चाहता हूँ, यदि प्रभु चाहेगा, इस धन्यवाद के संदेश में अदृश्य मसीह की दुल्हन का अदृश्य मिलाप, मसीह की दुल्हन का अदृश्य मिलाप। धन्यवाद के संदेश का सा प्रतीत नहीं होता, यद्यपि कोई भी वचन, हम इस सब के लिए धन्यवादित हैं। मैं परमेश्वर का आभारी हूं कि मैं संसार के इतिहास के समाप्त होने के दृश्य के समय में रह रहा हूं। मैं नहीं जानता यदि मैंने जगत की उत्पत्ति से पहले ऐसा कहा होगा और परमेश्वर ने सारी योजना मेरे लिए रखी होगी और मुझसे कहा, मैं चाहता हूं कि तुम प्रचार करो, और अब कौन सा युग तुम चाहते हो कि पृथ्वी पर प्रचार के लिए जाओ? मैंने ये युग चुना होगा क्योंकि मैं सोचता हूँ ये सुनहरा युग है। निश्चय ही मैंने उसके पृथ्वी के आगमन के समय को चाहा होगा, परंतु अब भी मैं इस समय सोचता हूँ कि अब एक महान समय है, क्योंकि ये समय है कि वो अपने छुड़ाए हुओं को लेने आ रहा है, पुनरुत्थान के समीप, जब सारे छुड़ाए हुए आएंगे। हमारे पास क्या ही महिमा युक्त सुअवसर है कि मरते हुए लोगों से बात करें। महान समय, हम इस विषय में उत्साहित हैं, और हम जानते हैं कि इतिहास बंद हो रहा है, संसार का इतिहास जल्द ही पूरा हो जाएगा, तब हम नए दिन में कदम रखने जा रहे हैं उस महान सहस्र शताब्दी में, कि एक विश्वासी के समान मैं सहस्र शताब्दी में विश्वास करता हूँ, सहस्र शताब्दी का राज्य, मसीह का राज्य इस पृथ्वी पर हजार वर्ष। प्रभु यीशु की शारीरिक वापसी कि शारीरिक लोगों को ले, महिमा से भरे उसके शुद्ध करने वाले लहू से। पौलुस यहाँ चित्रण दे रहा है हमारे पवित्र वचन में उस व्यवस्था और अनुग्रह के विषय में, और इसका विवाह और तलाक के समान चित्रण कर रहा है। ये लेखांश बहुत कम प्रचार किया गया है, क्योंकि ये बहुत कुछ विवाह तलाक का भाग जैसा है, परंतु ये विवाह और तलाक का भी महान भाग है कि कैसे यहाँ इसे हम व्यवस्थित करने का यत्न कर रहे हैं, जैसे जैसे एक कलीसिया के समान एक ही समय में संसार से और मसीह से और विवाहित नहीं हो सकते, और इस विषय में वैध और कानून हो, तब ये स्त्री के लिए हो सकता है कि पति के साथ रह रही हो जबकि उसका पति जीवित है। और इसके लिए मेरे अपने विचार हैं, और मैं विश्वास करता हूँ कि जो बाइबल कहती है वही सत्य है। अब मैं ये भी विश्वास करता हूँ, मेरे विश्वास में है कि ये भविष्यवाणी की एक महान भेद को खोलता है, और मैं आशा करता हूँ कि प्रभु आज रात्रि हमारी सहायता करेगा, जैसे कि हम अपने प्रतीक्षा करते हुए लोगों को जो देश के उस पार हैं देते हैं। एक बार ये कहा गया जब मैं इसके लिए टिप्पणी लिख रहा था, मैं पढ़ रहा था, मैं सही में पुस्तक का नाम स्मरण नहीं कर सक रहा हूँ जो इसमें है, परंतु मैं निश्चित हूँ ये ठीक है कि पुस्तकों में से एक जो मैं श्री मूडी पर मैंने पढ़ी, ड्विट मूडी शिकागो में, हमारी सुनने वाली एक महान कलीसिया आज रात्रि शिकागो में भी है, कि श्री मूडी रोमियो 7 पढ़ने के बाद सड़क पर भागे और पहला मनुष्य जो उन्हें मिला उससे उन्होंने कहा, क्या तुम अनुग्रह को जानते हो? और उस पुरुष ने उत्तर दिया, कौन अनुग्रह? श्री मूडी ने कहा, परमेश्वर का अनुग्रह। इसलिए वो इतना उत्तेजित हुआ जब उसने देखा कि क्या है, कि कैसे अनुग्रह ने हमें व्यवस्था से अलग किया, और कैसे कि अनुग्रह ने क्या कार्य किया है, जब कोई चीज जो मैं करना चाहता हूँ। जब मैंने सदा लोगों को बताया, जब मैंने रेखा पार करी, उस पार मैं खड़े होकर गाना चाहता हूँ, आश्चर्यजनक अनुग्रह कितना मीठा सुन पड़ता है, जिसने मुझ जैसे अभागे को बचाया। अनुग्रह, कीमती अनुग्रह, अनुग्रह के विषय में और जानना, क्योंकि अनुग्रह ही से हम बचाए गए, ना कि जो हम कर सकते हैं। जो हम कर सकते, जो भी हम करते हैं, ये हमारे लिए नहीं गिना गया। अनुग्रह वो जो हमें बचाता है, अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है विश्वास से। मैं इस महिला में कुछ और मिलाऊं, अनुग्रह में मैं इसे बाइबल में भी रखूं, चुनी हुई महिला कहलाई, ये कुमारी अनुग्रह जिसके विषय में मैं बात करने जा रहा हूँ। जानते हैं, बाइबल घोषणा करती है, कहा चुनी हुई महिला, कि यदि आप ध्यान दें, चुनी हुई महिला से ये शब्द आया है। एक महिला और सारी महिलाओं में से चुनी गई थी, जैसे कुंवारी को परमेश्वर की देह लानी थी पृथ्वी पर, वो चुनी हुई स्त्री थी। परमेश्वर ने मरियम को चुना, और परमेश्वर ने एक चुनी हुई स्त्री को भी चुना, जो कि दुल्हन है, वो चुनी हुई है। मैं आशा करता हूँ कि हम आज रात्रि उसके सदस्य हैं, समस्त संसार में, बल्कि समस्त राष्ट्र में। चित्रण यहाँ है, दुल्हन का मसीह के साथ संबंध इसको दर्शा रहा है, चुनी हुई महिला, और कैसे वो उसके पास लाई जाएगी, वो कहाँ से आएगी, और कैसे वो उसके पास लाई जाएगी। यहाँ चित्रण में कलीसिया जो हमें दृश्य मिला, ये स्त्री से चित्रित किया गया है, स्त्री जो सदा कलीसिया का प्रतीक है, क्योंकि कलीसिया को दुल्हन समझा गया है। एक दुल्हन, वो प्रभु यीशु की दुल्हन है, परमेश्वर का पुत्र। सदा यदि आप ध्यान करेंगे स्त्रियों की स्थिति और आचरण पर ध्यान दें, और आप देखेंगे कि कलीसिया कहाँ है। अब इसमें से कुछ टिप्पणियाँ आप में से कुछ को विचित्र प्रतीत होगी, परंतु ये संदेश का पूरक है जो मुझे प्रभु से मिला, जो कि मैं लोगों को देना चाहता हूँ। आप देखते हैं हर चीज स्वाभाविक है, ये कैसे घटित हो रहा है, स्वाभाविक, और इसे देखें, निश्चय ही ये आत्मिक में भी चलता है। अब यदि आप आज संसार में स्त्रियों का चरित्र देखेंगे, आज संसारिक कलीसिया का चरित्र देखिए, ध्यान दें। निसंदेह अब आत्मिक दुल्हन का भी चरित्र है, कलीसिया का, समझे? इस पर भी ध्यान दें, क्योंकि स्वाभाविक ऐसा कहलाती है, दुल्हन होने का दावा करती है। अब कृपया मुझे फिर से कहने दें, स्थानीय कलीसियाओं से आप बुरा ना माने, मैं बाहर समस्त देश से कह रहा हूँ, जिसको मैं सोचता हूँ कि चुनी हुई महिला है। इसलिए यदि यहाँ सेवक हों जो सहमत ना हों, थोड़ी देर के लिए शांति बनाए रखें, समझे? ध्यान दें और सुनिए, ध्यान दें, ये चरित्र जब आप स्त्रियों को क्रोध में होते हुए देखें, बस जो चाहे वो करे, ध्यान दें, तो ये कलीसिया वही चीज कर रही है। परंतु ध्यान दें, जब आत्मिक दुल्हन, जब उसमें बेदारी आने लगे, जब वो स्वयं को परमेश्वर के वचन की पंक्ति में लाने लगे, तब फिर ध्यान दें। अब देखिए कैसे पवित्र वचन उस समय तब संदेश होगा, दुल्हन को उठाने के लिए छा जाएगा कि उस महिला को उठा ले, चुनी हुई को। क्योंकि जैसे संसार, शैतान ने, जिसने पहली दुल्हन को धोखा दिया कि परमेश्वर के विरोध में पाप करे, परमेश्वर के वचन का अविश्वास करने के द्वारा, और अब आज जैसे कि हम स्वाभाविक कलीसिया आपकी बुद्धिमानी के सुसमाचार में वचन से और दूर होते चले जा रहे हैं, सामाजिक सुसमाचार में हम संसार की स्त्रियों को सड़कों पर पाते हैं, ऐसों की सदस्यता, स्वयं को उसी वातावरण में लिए चल रहे हैं। आप उन्हें नहीं बता सकते, वे साधारण शिष्टाचार की सारी इंद्रियों को खो दिया है जो लोगों में होती हैं, देखा? और इस प्रकार से कलीसिया है, और आप उन्हें सीधा सीधा एक्यूमेनिकल काउंसिल में जाते हुए देख सकते हैं, जैसे कि संसार में कोई चीज निश्चित होती है और सीधे रोम में जितने यत्न से जा सकती है। देखिए, क्योंकि ये भविष्यवाणी है और वो वहाँ है, ये उसका व्यवहार। परंतु फिर आत्मिक कलीसिया पर ध्यान दें, कैसे लोगों का झुंड हर बेदारी में से होते हुए बाहर बुलाया गया, चुना गया। मार्टिन लूथर के में भी ऐसा ही हुआ, उसी प्रकार से सुधार में यही चीजें जॉन वेस्ली के समय में हुई, यही चीज जब पहले पेंटिकॉस्टल आरंभ हुआ घटित हुई। उन्होंने उन स्त्रियों को वचन की पंक्ति में खड़ा कर दिया और फिर वे भटक गईं, वे फिर उसी अव्यवस्था में वापस चली गईं। परंतु फिर वो समय कि लोग पंक्ति में आने को तैयार हैं, एक संदेश है जो आया और वे उसके साथ पंक्तिबद्ध हो गए। लूथर एक दिन का संदेशवाहक था, न्यायोचितता का, और कलीसिया उसके साथ पंक्तिबद्ध हो गई। उनमें से कुछ बाकी निरंतर चलते रहे। वेस्ली पवित्रीकरण के साथ आया, कलीसिया उसके साथ पंक्तिबद्ध हो गई। पेंटिकॉस्टल वरदानों की वापसी के साथ आए, कलीसिया उसके साथ पंक्तिबद्ध हो गई। उस समय के चुने हुए और फिर धूमिल हो गए, फिर से नामधारीवाद में चले गए और बाकियों के साथ हो लिए, सारे उस पंक्ति में चले गए। अब परंतु ध्यान दें, जब लोगों ने वचन के साथ पंक्तिबद्ध होने का प्रयत्न किया, तो परमेश्वर के वचन से ताजा संदेश आता है सीधे लोगों के पास, और वे संदेश पकड़ते और हर बार पंक्तिबद्ध होते हैं। ये परमेश्वर की, ये हमारे पास है, हमारे पास परिवार है, हर परिवार में यहाँ रीति रिवाज है। कभी कभी सारी चीजें आपके लिए वर्षों अच्छी चलेंगी, तब अचानक से आपको झटका लगेगा। या हम दक्षिण में बहुत बार कहते हैं, जब वर्षा होती है ये मूसलाधार और चीज गड़बड़ हो जाती है। आप रात्रि के समय से निकल रहे हैं, तब वहाँ पौ फटती है, फिर रात्रि का समय, हर चीज निरंतरता में चलती है। भविष्यवक्ता पौलुस यहाँ कह रहा है कि एक स्त्री जब तक उसका पति मर न जाए फिर विवाह नहीं कर सकती। जब तक उसका पहला पति जीवित है वो दोबारा विवाह नहीं कर सकती। वो किसी भी परिस्थिति में जब तक उसका पहला पति जीवित है उसे अकेले रहना है, और यदि उसे ऐसा पाप करना ही है वो व्यभिचारिणी कहलाएगी। मैं स्वाभाविक रीति पे बोल रहा हूँ कि आत्मिक का नमूना हो। यदि ये स्त्री इस प्रकार का पाप करती है तो वो चिन्हित हो गई, एक व्यभिचारिणी। यदि उसके एक ही समय में दो जीवित पति हैं, इसलिए ये करने के द्वारा वो अपना अधिकार परमेश्वर और स्वर्ग के प्रति त्याग देती है। निश्चय ही वो परमेश्वर की व्यवस्था से बाहर हो गई, उस वचन के अनुसार जो मैंने अभी अभी पढ़ा। इसी प्रकार कलीसिया जब वो मत्सार और नामधारी को परमेश्वर के वचन के साथ मिलाने का यत्न करती है, वो नामधारी से विवाह नहीं कर सकती, और एक ही समय मसीह की दुल्हन बनी रहे, उसे एक और भी होना है। यहाँ नियम ये कहता है, परमेश्वर के वचन में बहुत सारे नियम हैं और ये उसका नियम है। पौलुस यही बात यहाँ कह रहा है, वो संसारिक मत्सार की कलीसिया से विवाह नहीं कर सकती और मसीह की दुल्हन बनी रहे, क्योंकि वो एक दूसरे के विपरीत हैं। अब स्मरण रखें, वे कहते हैं भाई हम ये विश्वास करते हैं परंतु हम ये विश्वास नहीं करते। यदि आप मसीह से विवाहित हैं, मसीह परमेश्वर का वचन है। संत यूहन्ना पहला अध्याय में कहा, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के संग था और वचन परमेश्वर था और वही देह बना और हमारे मध्य में रहा। मसीह जीवित वचन था, वो सदा से वचन था, वो अब भी वचन है, वो सदा वचन ही रहेगा। वो केवल परमेश्वर के गुणों का प्रकटीकरण था, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था और कोई पुत्र भी अपने पिता का गुण है। और जैसे कि आप अपने पिता के जीवांश में थे, अपने पिता की देह में जब वो युवा लड़का था आप उसमें थे, फिर भी वो आपके साथ संगति नहीं कर सका क्योंकि उसने आपको नहीं जाना। परंतु फिर एक माँ के बोने के स्थान में आप पृथ्वी पर लाए गए और अपने पिता की छवि बने, तब वो आपके साथ संगति कर सका। और ऐसे ही आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां थे। इसके पहले कि चांद सितारे या अणु भी होता, आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां थे, क्योंकि आप केवल आरंभ के परमेश्वर के गुणों के भौतिक प्रकटीकरण थे। क्योंकि अनंत जीवन का केवल एक ही रूप है और वो आप पहले से थे। आप नहीं जानते, इस विषय में कुछ नहीं जानते, न ही आप ये जान पाए कि आप कब अपने पृथ्वी के पिता में थे, क्योंकि आप भी उसकी छवि में थे। आप परमेश्वर की छवि में बने और आप परमेश्वर की महिमा और संगति के लिए प्रकट हुए। और इसलिए जैसे निश्चित रूप से आपका जीवांश आपके पिता में था, आपके प्रतीक प्राकृतिक जन्म के पहले आपका आत्मिक जीवांश परमेश्वर में होना था, क्योंकि आप गुणों का प्रकटीकरण है उसके विचारों का संसार की सृष्टि से पहले। ठीक है, और कोई विधि नहीं है, ये ठीक बात है। अब हम ये ध्यान देते हैं, तब आप में जीवन आरंभ हुआ, परमेश्वर का जीवन आप में आरंभ हुआ संसार के रचना से पहले। अब आप नामधारी मत्सार को वचन के साथ नहीं मिला सकते, क्योंकि ये बहुत ही विपरीत हैं एक दूसरे से। यही जो शैतान ने अपनी बुद्धिमानी अवधारणा से करने का यत्न किया हवा के संग, उसने कहा, उसने स्वीकार किया कि परमेश्वर ने ये कहा, परंतु उसने कहा निश्चय ही तुम ना मरोगे, समझे, और उन्होंने इसका विश्वास किया। और आज रात्रि मत्सार ने यही किया, नामधारी ने लोगों को परमेश्वर के वचन से अलग कर दिया। क्या यीशु ने नहीं कहा जब वो आता है, तुमने अपने रीति रिवाजों से परमेश्वर की आज्ञाओं को लोगों के लिए प्रभाव रहित बना दिया, और हमारे मत्सार से हमने पवित्र आत्मा के संगति को परमेश्वर के वचन के अभिषेक को छिन्न भिन्न कर दिया, जो कि इस पीढ़ी के लिए बंधा हुआ था। हमने लोगों को इस प्रकार अलग कर दिया नामधारी के द्वारा कि उन्हें इसे देखने का अवसर न मिल सके। अब परमेश्वर वो प्रत्येक पीढ़ी में उसने अपनी पुस्तक का नया भाग मिलाया। ये सब साथ मिलकर चलता है, जैसे कि मेरी देह बनी, मुझे बताया गया ये रीढ़ से आरंभ होता है, परंतु ये सब रीढ़ नहीं था, ये उससे पसली में गया और फेफड़ों से हाथों में, बाहों में, पैर और आदि आदि, और ये मुझ व्यक्ति में निकल कर आया। और इसी प्रकार परमेश्वर आरंभ में प्रकट हुआ और अंततः वो यहोवा के समान प्रकट हुआ, परमेश्वर पिता, फिर वो परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह में प्रकट हुआ, अब वो परमेश्वर पवित्र आत्मा के समान प्रकट हुआ, वही परमेश्वर सारे समय, तीन प्रकटीकरण एक ही परमेश्वर के। अब हम इसमें पाते हैं कि प्रत्येक पीढ़ी को परमेश्वर ने अपना वचन का भाग आरंभ से दिया, जैसे कि विकास आया, जैसे कि परमेश्वर ने पहली चीज सृजी, संभवतः मान लें कि उसने वनस्पति जीवन पहले सृजा, फिर उसने पशु जीवन की सृष्टि की, फिर उसने मनुष्य का जीवन सृजा, अगला विकास क्रम इस प्रकार से ऊपर उठ रहा है। इस प्रकार से ये परमेश्वर में और उसकी कलीसिया में था, न्यायोचितता लूथर से, पवित्र, ये उसकी दुल्हन को बाहर खींच रहा था, वो अपनी दुल्हन की रचना कर रहा है। न्याय उचितता लूथर की अधीनता में, पवित्रकरण वैसिली की अधीनता में और आदि आदि आप देखते हैं। वो आत्मा का विकास क्रम और अधिक दिया जा रहा है, क्योंकि देह बन रही है, सिर तक आ रही है, जो कि मसीह है, मसीह की देह। अब वो एक स्त्री के समान, यदि वो मसीह वचन से विवाहित है, वो एक ही समय में नामधारी कलीसिया से विवाह नहीं कर सकती, क्योंकि वो इससे बंधी है। वो एक ही समय में दो पतियों के संग नहीं रह सकती, वे एक दूसरे के विपरीत हैं। एक परमेश्वर का भेजा हुआ, दूसरा मनुष्य का बनाया हुआ, इसलिए वे विपरीत हैं। कहा, हर मनुष्य का वचन झूठा और मेरा सच्चा, ये परमेश्वर ने कहा। जितने वे एक दूसरे के विपरीत हैं, जैसे व्यवस्था अनुग्रह के, जैसा पौलुस यहाँ बोल रहा है, एक को मरना ही चाहिए कि दूसरे को ले, और यदि वो उन्हें मिलाने का यत्न करती है, वो व्यभिचारिणी कहलाएगी। ओ, इस पर विचार करें, न्यूयॉर्क, एरिजोना, समस्त राष्ट्र इस पर विचार करें। परमेश्वर ने कहा, यदि वो एक ही समय में दो से विवाहित होने का यत्न कर रही है, वो व्यभिचारिणी कहलाएगी। क्या व्यभिचारिणी स्वर्ग में प्रवेश कर सकती है? क्या परमेश्वर एक व्यभिचारिणी से विवाह करेगा? निश्चय ही नहीं। उसने हमें ये करने को मना किया है, वो व्यभिचारिणी कहलाएगी। तो फिर उसके बालक, यदि वो व्यभिचारिणी है, उसके बालक अवैध हैं। अवैध किसके लिए? अवैध कलीसिया के लिए नहीं, परंतु वचन के लिए वो अवैध हैं। यहाँ प्रकाशित वाक्य 3 का क्या ही चित्रण है, अंत के दिनों का लुदिकिया कलीसिया युग, क्या ही अवैध झुंड, क्या ही मिलावटी नामधारी, गुनगुना चल रहे हैं और स्वयं को मसीह कहते हैं और परमेश्वर के वचन का इनकार करते हैं, भक्ति का भेष रखते हैं, उसकी सामर्थ का इनकार करते हैं, जैसा कि भविष्यद्वक्ता ने कहा वे करेंगे। संसार में विवाह सबसे पुरानी संस्था है, सबसे पहले विवाह किया गया और अदन वाटिका में स्थापित किया गया। एक स्त्री को निश्चित चरित्र सौंपे गए हैं कि उसे दूषित नहीं होना चाहिए। एक स्त्री उसमें विश्वास योग्य हो। पृथ्वी पर स्त्री के समान कोई भी प्राणी नहीं, कोई कुतिया नहीं, किसी भी प्रकार की मादा नहीं, जिसे चरित्र सौंपे गए हों, जो स्त्री को। एक स्त्री सृष्टि के आरंभ में नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि वो गिर जाएगी, और सारी मादाएं व्यभिचार नहीं कर सकती, केवल यही है जो व्यभिचार कर सकती है। यदि वो मूल के समान बनाई जाती तो वो परमेश्वर की महान बुद्धि की आलोचनात्मक नहीं होती, समझे? वो पुरुष का एक उपफल बनाई गई, परंतु क्योंकि वो उस ओर ढाली गई, उसे परमेश्वर की ओर से पवित्र जिम्मेदारी भी दी गई, छुटकारे के लिए उसे चरित्र दिए गए कि उसे दूषित नहीं होना चाहिए। यदि वे उन्हें खराब नहीं करेगी, वो जीवन भर के लिए दूषित है, कोई मतलब नहीं, उसे कितना भी क्षमा किया जाए, वो न्यायोचित नहीं हो सकती। इस पर मैं थोड़ा बहुत जोर दूंगा, इस पर पवित्र लेख है, कुछ ही मिनटों में। वो अपने दूषित होने पर क्षमा की जा सकती है, परंतु इस जीवन में दोष मुक्त नहीं हो सकती, ये सदा उसके संग रहेगा। अब ध्यान दें, उसे ये दिया गया है, वो क्षमा की जा सकती है, पर दोष मुक्त नहीं। उसका शरीर उसको परमेश्वर की ओर से एक पवित्र धरोहर दिया गया, कुतिया नहीं, चिड़िया नहीं, कोई दूसरा जानवर नहीं, कोई दूसरा प्राणी नहीं, इस प्रकार का नहीं, केवल वही एक। इसके द्वारा वो, कारण कि इतनी पवित्र है, उसे पृथ्वी पर जीवन लाना है, उसकी देह जीवन पालन का स्थान है, इसलिए इस कारण उसे पवित्र धरोहर दी गई। अब यहाँ जहाँ आप में से बहुत से असहमत हो सकते हैं, आप धर्म वैज्ञानिक लोग, यही जिसने समस्त मानव जाति को दूषित कर दिया, क्या यही व्यभिचार आरंभ में था? उसकी उर्वरता का निषेचन हुआ, उसने जुड़वाओं को जन्म दिया, और केन और हाबिल, एक क्रिया दो बालक, पवित्र वचन में खोजें। ओ, अब ध्यान दें, हम पाते हैं कि उसका शरीर उपजाऊ भूमि है, इसलिए ये पवित्र विश्वास है कि दूषित न किया जाए। अब मैं ये उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, ये दिखाने के लिए कि कलीसिया कहाँ खड़ी है। मैं आप महिलाओं के विषय में नहीं बोल रहा हूँ, आप जो भी हैं, ये आपके और परमेश्वर के बीच में है, या आप पुरुषों, परंतु मैं कलीसिया और मसीह के लिए बोल रहा हूँ। अब ये उसको दिया गया है कि जीवन को लाए, कि केवल परमेश्वर स्वयं दे सकता है, उसका पति जीवांश रख सकता है, परंतु जीवन परमेश्वर को ही उत्पन्न करना होता है। ये सही है, इसे आना ही है। सारे जीवन परमेश्वर की ओर से आते हैं, कोई जीवन हो परमेश्वर की ओर से ही आना होता है। ये दूषित हुआ, यही जो पाप में बनता है, परंतु जीवन परमेश्वर की ओर से आता है, वो जीवन का रचयिता है। अब वो, मैं तीन चीजों को बताना चाहता हूँ जिससे उसे अलग नहीं होना चाहिए। अब मैं बोल रहा हूँ कि कलीसिया को मस्तिष्क में रखें, जबकि मैं ये स्वाभाविक स्त्री के लिए बोल रहा हूँ, जैसे कि पौलुस यहाँ रोमियो का 7वां अध्याय, उसका पवित्र विश्वास गुण उसे उसके प्रभु के द्वारा सौंपा गया, एक विशेष सद्गुण, इसे कोई नहीं रखता सिवाय स्त्री के। ये उसे प्रभु की ओर से सौंपा गया, उसे एक नैतिक सद्गुण को दूषित नहीं करना चाहिए। यदि वो कुछ गलत करती है तो उसे अपने पति के सामने स्वीकार कर लेना चाहिए, इसके पहले कि वो उसे ग्रहण करे और इसे ठीक करे। वैसे ही जैसे कलीसिया जो व्यवस्था से विवाहित थी, को भी मसीह के सम्मुख आना चाहिए दूसरे विवाह से पहले। इसे ये स्वीकार करना है, यदि वो नहीं करती है और वो अपने पति के संग 10 वर्ष रहती है और फिर स्वीकार करती है, उसे अधिकार है कि उसे छोड़कर दूसरी स्त्री से विवाह करे। ये वचन है, वे विचार दूषित जीवन है। यूसुफ अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके घर में है वो पवित्र आत्मा का है। वो उसे चुपके से छोड़ देना चाहता था। देखिए, उसकी मंगनी हो चुकी थी। जब आपकी उससे मंगनी हो गई, तो जहाँ तक परमेश्वर का संबंध है, आपका उससे विवाह हो गया। अब ध्यान दें, उसके पास पवित्र नैतिक गुण था जो उसे दिया गया था, प्रभु से उसे मिला था। परमेश्वर ने उसे ये गुण दिया, जैसे अदन वाटिका में वो हाँ या ना कह सकती थी। उसके पास स्त्री तत्व का पवित्र विश्वास था, उसे समर्पित था, जिसे उसे तोड़ना नहीं था। स्त्री तत्व से मेरा अर्थ यहाँ बोलने का उसका आचरण, उसका चरित्र आसपास के लोगों में। हर कोई पुरुष नहीं, इन पर्दों पर देखें, चलचित्र के सितारे चुंबन कर रहे हैं, गले लगा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, चारों ओर इन स्त्रियों के संग। खराब चरित्र की स्त्री ये करती है, वो गुणवान हो सकती है नहीं तो, परंतु देखिए उसके हृदय में, जब वे ग्रंथियां, यौन ग्रंथियां होठों में हैं, पुरुष स्त्री का चुंबन करता है, वास्तव में वो संभावित व्यभिचार कर चुका। यौन ग्रंथियां स्त्री के होठों में हैं और पुरुष के होठों में, वो उसके हाथ पर चुंबन कर सकता है, वो यौन ग्रंथियों का मिश्रण नहीं होगा, परंतु होठों में यौन ग्रंथियां होती हैं। और सब ये निरर्थक बातें, देखिए आज हॉलीवुड सारी गिरावटों और चारों ओर महिलाओं से प्रेम और छोटी छोटी लड़कियां ये सब आदि आदि देख रही हैं। कोई आश्चर्य नहीं, हमारे आचरण सड़ और बर्बाद हो गए हैं, और गंदगी देखिए, क्योंकि ये बालकों के सामने रखते हैं। ये ठीक बात है, अंतिम दिन के लिए ये इसी प्रकार होना चाहिए। अब कलीसिया को मस्तिष्क में रखें, वो चूम रही है, नीचे जा रही है, वचन को छोड़ चारों ओर सबसे घुल मिल रही है, शैतान को और शिक्षा और वैज्ञानिक खोजें और आदि आदि। वैज्ञानिक शिक्षा हर चीज परमेश्वर के बिल्कुल विरोध में है। सभ्यता का सारा तंत्र जो अब हमारे पास है, पूर्णतः मसीह विरोधी है। शिक्षा तंत्र मसीह विरोधी है, सभ्यता मसीह विरोधी है, ये परमेश्वर के विरोध में है। आप कहते हैं सभ्यता के विरोध में, इन्हीं किन्हीं दिनों में परमेश्वर की सभ्यता होगी, उसमें मृत्यु का कोई संबंध नहीं होगा। आधुनिक सभ्यता शैतान के द्वारा आई है, मैं आपको ये सिद्ध कर दूंगा, यदि आज रात्रि प्रभु चाहेगा तो बाइबल से ये सारी चीजें शैतान की हैं। हमारी नई सभ्यता में इसमें उसका कुछ नहीं है, उसके पास ये पवित्र स्त्री तत्व है। कोई आश्चर्य नहीं कि पुरुष स्त्रियों के आसपास इस प्रकार करते हैं, क्योंकि स्त्रियां पुरुषों के आसपास जिस प्रकार वे करती हैं, वो स्वयं का आचरण उन छोटे छोटे वस्त्रों और कसे हुए वस्त्रों को पहनकर पुरुषों के कपड़े और आदि चीजें सड़कों पर मटकती फिरती हैं। कोई मतलब नहीं वो क्या कहती है, वो अपने पति के लिए गुणकारी हो सकती है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में वो एक व्यभिचारिणी है। जो कोई भी कुदृष्टि से स्त्री को देखता है, वो अपने हृदय में उसके संग व्यभिचार कर चुका और उसने स्वयं को इसलिए रखा, और यही ठीक जो कलीसिया ने संसार के साथ किया। ध्यान दें, ये उसे पवित्र गुण समर्पित किया गया है, पवित्र स्त्रीत्व और पवित्र मातृत्व, अपने पति के लिए आदर। जरा आज देखें, निश्चित नगरों में, बहुत से नगरों में उनकी बड़ी बड़ी दावतें, जिसको समाज में कहते हैं, कलीसिया के सदस्य भी अपनी टोपियां नीचे फर्श पे रखते हैं और वे सब शराब पी लेते हैं और अपनी अपनी चाबियां उनमें डाल देते हैं। प्रत्येक स्त्री जाती है और टोपी में से चाबी निकालती है। सप्ताह के अंत में वो जिस पुरुष के संग रहेगी, इस प्रकार की दावतें, जिसके लिए मेरे पास यहाँ कहने के लिए बहुत है, यदि प्रभु चाहेगा, ऐसी गंदगी, इसमें जाने के लिए मेरे पास समय नहीं है। और कलीसियाएं ऐसी खराब, हर चीज के साथ व्यभिचार कर रही हैं, और उसका ऐसे में जाने का कोई काम नहीं। उसे वचन के साथ टिकना चाहिए। इमारतें ठीक हैं, चिकित्सालय ठीक हैं, और सारी चीजें ठीक हैं, शिक्षा की योजनाएं ठीक हैं। हमें यहाँ पर जीना है, पढ़ना लिखना है, ये व्यवस्था है। जैसे कि आरंभ में हमें कोई कपड़े पहनने ही नहीं थे, इस सप्ताह के अंत में मैं इस पर प्रचार करूंगा, प्रभु ने चाहा, परंतु हमें कपड़े पहनने हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें कपड़े दिए हैं, परंतु आरंभ में हमें उनकी आवश्यकता नहीं थी, हम ढके हुए थे। अब वो अपने पाप से ढकी है, वो ये भी नहीं जानती कि वो पाप कर रही है। देखिए, जैसे वो तब थी, अब वो शैतान के द्वारा ढकी हुई है, तब वो परमेश्वर के द्वारा ढकी थी। इसका अंतर है। अब हम पाते हैं कि उसे पवित्र विश्वास दिया गया है, जिसे उसे तोड़ना नहीं चाहिए। स्त्रीत्व का व्यवहार, उसका अपना चरित्र, अपने बालकों का पालन पोषण करे, अपने पति के लिए सम्मानित। आजकल वे इस पर कुछ अधिक ध्यान देते हैं, संसार की ओर और किसी चीज पर नहीं। आपको कभी मेरे कार्यालय कक्ष में बैठना चाहिए और देखें कि पुरुष अपनी पत्नियों को लाते हैं, जहां वे स्वयं को परमेश्वर के साथ सही करना चाहते हैं, और सारे उन पुरुषों के साथ रह रही हैं, स्वीकार करती हैं और सब कुछ, जब से उनका विवाह हुआ। ओ, आप कहते हैं ये नहीं, वे पेंटिकॉस्टल हैं, ओ दूसरे नहीं आएंगे, ये कैसे दूर हो सकता है, जबकि आप संसार के साथ मिल रहे हैं, कलीसिया और सारे फैशन और चीजें जो हमारी हैं। मैं इस विषय में बोल रहा हूँ, हम मूल पेंटिकॉस्टल के समान नहीं रहे, जैसे दिन रात से हम कहीं भटक गए हैं, किसी अंधकार उथल पुथल में कहीं और खो गए। क्या ही पवित्र विश्वास, स्त्री पर कितनी जवाबदेही। अब देखें क्यों वो कलीसिया का प्रतीक है, जिसके पास भी वही जिम्मेदारी है। जैसे स्त्री के पास पवित्र जिम्मेदारी है उसके स्त्रीत्व को, उसके गुण, उसके पति के लिए, कलीसिया की भी पवित्र जवाबदेही प्रार्थना और वचन के लिए और मसीह, वैसे ही जैसे स्त्री के पास है। और जैसे स्त्री दूसरे पुरुष के साथ राह से हट जाती है, जब कलीसिया इन संस्थागत योजनाओं में चली जाती है और योजनाओं को बनाने में और विद्यालय और आदि आदि, मेरे पास उनके विरोध में कुछ नहीं है, वे ठीक हैं, वे अपना उद्देश्य पूरा करते हैं, परंतु वे नहीं हैं। यीशु ने कभी नहीं कहा जाओ और विद्यालय बनाओ, उसने कहा वचन प्रचार करो, यही जहां वे उस पर ध्यान नहीं देते। संस्थाएं, विद्यालय और आदि आदि बनाना नहीं, वे ठीक हैं, परंतु ये कलीसिया का कर्तव्य नहीं। उनका कर्तव्य सुसमाचार प्रचार करना है। हमने इसे छोड़कर सब कुछ किया, हम भटक गए जैसे कि शैतान ने किया, और इसे किसी किसी सुसमाचार के साथ मिला दिया, किसी किसी चीजों के साथ, जब तक ये कुछ नहीं, सड़हाट की मिलावट नहीं हो गया। हमारा समस्त संसार का चलन देखें। अधिक समय नहीं हुआ रीडर डाइजेस्ट पढ़ते हुए, जहां की युवा लड़कियां रजनो निवृत्ति में जा रही हैं और पुरुषों के जीवन में बदलाव, 20 से 25 वर्ष के मध्य में वे अपनी अधेड़ अवस्था में जा रहे हैं। भ्रष्ट क्यों? खाने की चीजों पर वैज्ञानिक खोजें, उन्हें तोड़ दिया, उन प्राकृतिक चीजों से जो हमारे शरीर में होने चाहिए। हम मिलावट के मरते हुए झुंड को छोड़ और कुछ नहीं है। अब यही वो जो कलीसिया, ये भी है, ये वैसी स्थिति है, ये प्रतीक है। इसके पास वही बहुमूल्य गुण आत्मा के द्वारा उसे दिया गया, आत्मा और वचन को संभाल कर रखो और कभी वे विचार न करो संसार की किसी भी चीज का या किसी से भी। वचन के लिए पवित्र रहो, जैसे महिला अपने पति के लिए होती है। ये पवित्र विश्वास है कि अपने प्रभु के वचन को मनुष्य के बनाए हर मतसार बुद्धिमानी नामधारी से ऊपर कलीसिया को विश्वास दिया गया। यदि वे कहते हैं भाई मेरी कलीसिया, मैं चिंता नहीं करता आपकी कलीसिया क्या विश्वास करती है, यदि ये परमेश्वर के वचन के विरोध में है तो इससे अलग रहें। बाइबल ने कहा यीशु मसीह कल आज सर्वदा एक सा है। मरकुस 16 ने कहा विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे। यदि कलीसिया इससे भिन्न प्रचार करे, आप नहीं करते, तो आप उस चीज के लिए मर गए। परमेश्वर के वचन में फिर से जन्म लें। सारे जगत में जाओ और हर प्राणी को सुसमाचार प्रचार करो। ये कितनी दूर गया? विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे सारे जगत में और हर प्राणी को जो विश्वास करेगा। हम इससे कैसे बच सकते हैं? निश्चय ही, परंतु यदि ये इसके लिए उत्तरदायी है। परंतु अब देखिए, क्या हॉलीवुड ने हमारी स्त्रियों से गुणकारी चीजें ले ली? मैं यहाँ बैठे हुए प्रिय वृद्ध महिला बहन श्रेडर को देख रहा हूँ। यहाँ बहुत सी महिलाएं हैं और पीछे और बहन मूर वहाँ पर पुरानी महिलाएं जिन्हें कुछ वर्षों पहले स्मरण है। यदि उनकी माताएं या वे बाहर सड़क पर चला करती जिस प्रकार से आज कुछ स्त्रियां चलती हैं, कलीसियाई सदस्य वे स्त्री को पागलपन के लिए ताले में बंद कर देते कि वो स्कर्ट पहनना भूल गई। भाई यदि ये तब पागलपन था तो आज भी पागलपन है। ठीक है, देखिए, सारा संसार सिद्ध करता है कि ये पागलपन है। हत्याएं और चीजें देखें जो संसार में चल रही हैं, समझे? पागलपन। सब चीजें प्रकाशित वाक्य को पूरा करने आ रही हैं। इस सप्ताह हम इसे ले सकते हैं जहां ये घिनौनी चीजें स्वाभाविक नहीं, ये आत्मिक चीजें जो लोगों को चट्टानों और पहाड़ों के लिए चिल्लाती हैं और हर चीज की उन पर गिर पड़े। सारा कुल मिलाकर ये संसार पागलपन में जाएगा। ये लगभग वहीं पर है। क्यों आप इसके पद चिन्ह देखते हैं? ये यही है, ये सड़कों पर चल रहा है। कलीसिया के मंच पर पूर्ण पागलपन उन चीजों को कर रहे हैं जिन्हें मनुष्य करने को नहीं सोचता सभ्य होने के नाते। देखिए, हॉलीवुड ने स्त्रियों के साथ क्या किया। देखिए ये कैसा है, स्त्री के पवित्र गुण को लूट लिया। और इस प्रकार से हम बढ़ सकते हैं, समझे? उसने ये सब खो दिया। उसने ये कैसे किया? क्योंकि वहाँ तेज बुद्धि का साधन है जो कलीसिया कहलाती है। जैसे अदन की वाटिका में एक धूर्त व्यक्ति शैतान कलीसिया में आया, जैसे उसने अदन वाटिका में किया और इसमें धोखा दिया। वो धोखे में आई स्त्री सोचती है उसका अर्थ गलत करने के लिए नहीं था। हवा का अर्थ गलत करने का नहीं था, ये जानबूझकर नहीं था। परंतु वो बाइबल ने दूसरे तिमोथियस पहले तिमोथियस 3 में कहा वो बहकाई गई। और बहकाना जब जानबूझकर करना ना हो, ये जब आपको करने के लिए बहकाया जाए। और आज बिल्कुल यही हुआ। वो टेलीविजन, पत्रिकाओं और इन लोगों के द्वारा बहकाई गई है। और ये सारी अच्छी अच्छी चीजें जो वे वहाँ सड़कों पर करने जा रहे हैं, आधुनिक लड़कियाँ वे पत्रिकाओं में देखती, चित्रों में देखती हैं, वे सड़कों पर देखती हैं, वे दुकानों में कपड़े देखती हैं। कैसे शैतान नरक को वो महान यंत्र लोगों के बीच आया और इन चीजों में बहका दिया। और स्त्री सोचती है कि वो सही है और वो मरी हुई है और ये नहीं जानती वो परमेश्वर से दूर है। देखिए कैसे उसने ये सब खो दिया और ये कितना चालाकी भरा था। आज मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान दें, यीशु ने इसे बोला। और यदि आप भी पढ़ना चाहें, यीशु ने ये उल्लेख किया है कि ये सारी चीजें घटित होंगी। क्या आपको ये मालूम है? उसकी अंतिम घड़ियों में क्रूस पर चढ़ने के थोड़ा पहले, हम जरा इसे पढ़ें। संत लूका 23वां अध्याय, एक क्षण, संडे स्कूल के पाठ के समान 27वें पद से आरंभ करके। मैं विश्वास करता हूँ कि मैंने यहाँ निशान लगाया है, यीशु कलवरी पर जा रहा है। सुनिए जैसा कि मैं ये पढ़ता हूँ, ठीक है? संत लूका 23:27, मैं विश्वास करता हूँ जहाँ ये हमारे पास है, मेरी टिप्पणियाँ इसी प्रकार की हैं। हाँ, ये रहा। और लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे होली और बहुत सी स्त्रियां भी जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थीं। यीशु ने उनकी ओर फिर कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। क्योंकि देखो वे दिन आते हैं जिनमें कहेंगे, धन्य हैं वे जो बांझ हैं और वे गर्भ जो ना जाने और वे स्तन जिन्होंने दूध ना पिलाया। आज सोचते हैं उसके लिए बालक होना अशोभनीय बात है। देखा, उस समय वे पहाड़ों से कहने लगे कि हम पर गिरो और टीलों से कि हमें ढांप लो। क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। उस दिन के लिए बोल रहा है जब स्त्रियां बालकों को नहीं चाहेंगी, वे कुत्ते या बिल्ली को चाहेंगी या ऐसा ही, परंतु वो अब और बालक नहीं चाहती। क्यों? वो पुरानी हब्बड़ माँ है। यदि उसके पास बालक है, देखा, वो नहीं चाहती। ये हॉलीवुड की टिप्पणी है, ये नहीं चाहता कि उसकी स्त्री पुरानी हब्बड़ माँ हो, इसलिए वो करेगी, वो कोई शल्य चिकित्सा अपने या उसके करवाएगी जिससे उसके बालक ना हो। वे कोई बालक नहीं चाहते। यीशु ने इसके लिए बोला और उसने क्या कहा? उस समय वे पहाड़ों के लिए चिल्लाएंगे और टीलों के लिए कि उन पर गिर पड़े। वो जन्म ना देने का अभ्यास करेगी ताकि वो दावतों में जा सके। वो बालक के पालन पोषण की परेशानी में नहीं जा सकती, ये उसकी आकृति बिगाड़ देगा। वो जैसी दिखा करती थी नहीं दिखेगी, और उसका पति इस मार्ग पर जाने देने के लिए ध्यान नहीं देगा, वो उसे बालक नहीं देगी। यीशु ने इसके लिए कहा, और उसने कहा जब ये कर रहे होंगे उस समय वे चिल्लाने जा रहे हैं चट्टानों के लिए कि उन पर गिर पड़े। ये प्रभु का आगमन है। वे बिल्ली और कुत्तों की देखभाल के लिए बहुत पैसों का भुगतान करते हैं, ये ठीक बात है। उसे किसी चीज का पालन पोषण करना ही है क्योंकि परमेश्वर ने ये उसे उसके स्वभाव में दिया है। मैंने ध्यान दिया, मैंने एक बड़ा शिकार किया, एक पुराना भालू। वर्ष के अंत में जब उसने नर भालू को जन्म दिया तब वे छोटे छोटे बच्चे जन्मे। वे सुंदर अच्छे आकार के बच्चे थे, संभव है 100 या अधिक पौंड के वजन के थे। वो उन्हें छोड़ देगी कि वे स्वयं को सुप्त अवस्था में कर ले क्योंकि वो और बच्चे देने वाली थी। वे फरवरी में जन्मे, भालू इस विषय में कुछ नहीं जानता। वे छोटे थैलों में जन्मे, कैसे परमेश्वर ने ये छोटे छोटे बोरे खोले, स्वयं उसमें छोटे जैसे छोटे सेलफोन के थैले। उन्होंने अपना रास्ता ढूंढ लिया। उनकी माँ गहरी निद्रा में है, उसने अक्टूबर से कुछ नहीं खाया है और ये फरवरी है। वे आते हैं और मई के मध्य तक स्तनपान करते हैं। तब जब वो अपने बच्चों को देखती है तो वे अच्छे बड़े बच्चे हो जाते हैं, 10 या 15 पाउंड का एक। उन्होंने उससे स्तनपान किया, उसके पास कैसे दूध आया ये परमेश्वर का विचार है। वह स्वयं जीती है और बच्चों के लिए दूध उत्पन्न करती है। और फिर यदि उसके बालक उत्पन्न नहीं होते और उसके पास बच्चे नहीं है तो वो फिर बीते वर्ष के बालकों को खोजती है और सारी गर्मियों उनकी देखभाल करती है, क्योंकि ये प्रवृत्ति परमेश्वर की दी हुई है, उसे किसी की देखभाल करनी है। और यदि एक महिला के पास उसके पति के लिए बालक नहीं है, वो कुत्ता या बिल्ली लेगी, उसे किसी को पालना है, ये स्वभाव है। परंतु अपने पति के लिए बालक रखना और परमेश्वर की सेवा के लिए पालना, ये पूर्णतः उसकी लीक से परे है। उसे चाहिए, ओ वो इतनी अपमानित होगी यदि उसने किया। अपनी पाप प्रेम समाज, इस 1965 के प्रकार वाली स्त्रियां, आज की आधुनिक कलीसिया का सच्चा चित्र, न ही आधुनिक कलीसिया इनमें से किसी को यहाँ चाहती है। हाँ जी हाँ, समझे, रोना चिल्लाना अन्य भाषा बोलना, प्रेत 238 युवा उसके आसपास हैं। हाँ हाँ, वो उनमें से किसी को नहीं चाहती कि हुंकारे और रोए और चिल्लाए आमीन हेलुलिया। क्यों ऐसा बालक उसे तुरंत नामधारी कलीसिया से बाहर करवा देगा। किसी कलीसिया में उनके यहाँ एक ऐसा था, क्यों वे उसे जल्दी ही निकाल देंगे। क्यों तुम ऐसे को अपने साथ साथ चलने दोगे। इसलिए आप देखते हैं वो किसी चीज से गर्वित है क्योंकि सारे समय वो सदस्य को लेकर आती है। परंतु वो उनमें से किसी को नहीं चाहती, चिल्लाए शोर करे लड़खड़ाती भाषा में, प्रेत 238 बेचारे जो कि वो सोचती है वे हैं, ये निश्चय ही उसे शर्मिंदा करेगा, ये उसे नष्ट करेगा उसकी शिक्षा को, नैतिक वैज्ञानिक झुंड की कलीसिया जिससे वो यहाँ संबंध रखती है। वे उसे बाहर फेंक देंगे, अगली सभा में वो इसे नहीं ले सकती। इसलिए वो वचन से गर्वित नहीं होना चाहती क्योंकि यही एक प्रकार है जिसे वचन ला सकता है। जो परमेश्वर के आत्मा से उत्पन्न हुआ है उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। बुद्धिमान कलीसिया सदस्य नहीं और मत्सार चल रहा है, कटे बाल रंगे चेहरे ऐसी कोई चीज नहीं, जैसा सब इसमें का है। आप ये परमेश्वर के वचन में नहीं पाते, आप पुराने चलन का पवित्र किया हुआ पवित्र आत्मा से भरा बालक परमेश्वर के आत्मा से जन्मे, चिल्ला रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। ये कुल मिलाकर उसकी पहुंच से बाहर है। वो ये नहीं चाहती, ओ नहीं श्रीमान, वास्तव में नहीं। तो फिर वो क्या करती है, इसलिए वो एक जोड़ा लाती है, एक रंगा हुआ चेहरा, छोटे कपड़े, इजाबेल की मंडली, अवैध बिल्लियां। वे उन्हें कहते हैं, मैं सोचता हूँ यही है, देखा, मैं सोचता हूँ वे इसे बिल्ली कहते हैं, समझे, उस बिल्ली को देखो वो जा रही है, वे कहते हैं, या कुछ इस प्रकार से आप जानते हैं। वो जन्मी थी या विवाह हुआ, अपने पहले पति से जुड़ी है, पहला आदम, व्यभिचारिणी पत्नी के द्वारा, हवा आदम की पहली पत्नी। आप कहते हैं व्यभिचारिणी, निश्चय ही वो थी, परंतु ओ वो दावा करती है कि ये आदम, ये पहला आदम मर गया। ओ निश्चय ही वो बहुत पहले मर गया, मैं फिर से जन्मी हूँ। उसने कहा, निश्चय ही मैंने दूसरे आदम से विवाह किया। मसीह वचन, कैसे, ध्यान दें, वो किससे प्रेम करती है, उसके प्रेमी को देखें। आप देखना चाहते हैं कि वो किसके प्रेम में है। वचन ये कहता है, परंतु उसने कहा, मेरी कलीसिया ये कहती है, तो फिर वो किसके प्रेम में है, उसका पति कौन है, उसके अपने फल प्रमाणित करते हैं, वो क्या है, बिल्कुल ठीक दर्शाता है वो क्या है। ध्यान दें, पहले वो जन्मी आदम को क्योंकि ये उसका स्वाभाविक जन्म है, समझे, और ये उसने कभी नहीं छोड़ा, ये संसार का प्रेम है। वो दावा करती है कि वो दूसरी बार जन्मी है मसीह को, परंतु उसका प्रेमी, ध्यान दें, आदम है अब भी, क्योंकि वो संसार से प्रेम करती है। और दूसरी बात ध्यान दें, वो किस प्रकार के बालक रखती है, ये बताता है उसका पिता क्या है, कि ये पहला या दूसरा आदम है। यदि कलीसिया दूसरे आदम के बालक जन्माती है तो वे दूसरे आदम के समान व्यवहार करते हैं, जैसा उन्होंने पेंतिकौसल पे किया था। ये वास्तव में सच्चे दूसरे आदम के बालक हैं, समझे, ठीक है। उनका स्वभाव उसके और हवा के समान है। जी हाँ श्रीमान, उसकी पुत्री चेहरा रंगे है, बाल कटे हुए हैं, पुरुषों के वस्त्र पहने हैं, पैंट। बाइबल ने उसके लिए कहा ये ना करे, वो अपने बाल कटाती है, ये उसके लिए लज्जा की बात है। आप कहते हैं इस पर शांत रहें, यही जो वचन कहता है, मैं केवल स्वभाव की ओर इशारा कर रहा हूँ, यही जो वो करती है। उसके पुत्र उससे जन्मे हैं, शिक्षा पर निर्भर करते हैं, विद्यालय जाना, किसी बाइबल विद्यालय पर कहलाने वाले, कोई महान कॉलेज जो पुराना समझा जाता है उन्हें बाहर निकाल रहा है किसी प्रकार से, एक अंडे सेने की मशीन की तरह। नामधारी के खोजकर्ता केन के समान धार्मिक, वचन के लिए अवैध जैसे केन था, ठीक है, बीमार जैसे, अवैध जैसा केन था, निश्चय ही नामधारी के खोजी, आप देखते हैं ये क्या है। परमेश्वर ने नामधारी को कभी भी संस्थागत नहीं किया, वो सदा इसके विरोध में रहा, उसका वचन इसके विरोध में, परंतु वे इसी में ही जकड़े हुए हैं, इसलिए आप देखते हैं कि वे क्या ला रहे हैं। ये दर्शाता है उनके माता पिता कौन है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, ऐसे ही अवैध जैसे केन था, इसी प्रकार के बालक उसने हवा से जन्माए, वे वचन से दूर हो गए, तब देखिए उसने क्या उत्पन्न किया, ठीक वही जो कलीसिया ने उत्पन्न किया, वही चीज। केन ने आपको ये वचन के द्वारा सिद्ध किया, यही जहाँ से शिक्षा और सभ्यता आई है, केन के द्वारा, ये सही बात है, क्योंकि वे दावा करते हैं, परंतु वे परमेश्वर के पुत्र होने का दावा करते हैं, परंतु वे नामधारी से जन्मे हैं, नामधारी विद्यालय के ज्ञानी और सब कुछ, ये बिल्कुल ठीक बात है। चालाक तेज ऐसे ही सर्प था उनका पिता, ठीक है, ऐसे ही चालाक और वैज्ञानिक प्रचारक जैसे केन था, समझे, ये बिल्कुल वही चीज है। आप कहते हैं भाई ब्रैनम क्या ये सत्य है, उत्पत्ति 4:16 निकालें और देखें, यहाँ पीछे उत्पत्ति 4:16 में, एक मिनट, आप पाएंगे कि ये कैसे घटित हुआ। तब केन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नाम देश में जो अदन के पूर्व की ओर है रहने लगा। जब केन अपनी पत्नी के पास गया तब वो गर्भवती हुई और हनोक को जन्मी। फिर केन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। और नीचे तुबाल तक उनमें औजार बनाने वाले, संगीत और आदि आदि हुए। सभ्यता केन के द्वारा आई, ठीक है, नगर बनाना, यंत्र, वैज्ञानिक पुरुष केन के द्वारा आए, सर्पवंश। अब पांचवें पद पर ध्यान दें, और आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया। अब उसने अपनी पत्नी को एक बार जाना और उसके दो बालक हुए, उसके केन और हाबिल हुए, एक रिया और दो बालक। आप कहते हैं अधिक समय नहीं हुआ, उन्होंने मुझे बताया, ये हो सकता है, हमारे पास यहाँ हॉलीवुड में एक मामला है, हॉलीवुड, अभी टूसान में एक मामला हुआ, कोर्ट में एक स्त्री ने एक अश्वेत और एक श्वेत बालक को जन्म दिया एक ही समय में। वे कहते हैं वो ये नहीं कर सकती, उसके भी दो उपजाऊ बीज हो सकते हैं। अभी वे कचहरी में ही हैं, मैं जानता हूँ, कुत्ते ये कर सकते हैं, पशु ये करेगा। वो वहाँ आ गई, श्वेत पुरुष ने कहा मैं अपने ही बालक का बोझ उठाऊंगा, परंतु उसका नहीं, और स्त्री ने स्वीकार किया। उस प्रातः वो अपने पति के साथ रही और दोपहर बाद अश्वेत के संग। डॉक्टर ने कहा यदि ये अंदर है 24 घंटे के अंदर ही अंदर तो ये घटित होगा, यदि दूसरा उपजाऊ बीज वहाँ पर है और वहाँ थे, उसने किया, और बिल्कुल ठीक यही हुआ। केन जो शैतान उस प्रातः सर्प में, और आदम उस दोपहर बाद जब वो और उसके दो बालक हुए। अब फिर आदम अपनी पत्नी के पास गया दूसरी बार और वो एक पुत्र जनी। स्मरण रहे बाइबल ने कहीं नहीं कहा कि केन आदम का पुत्र था, कहा वो दुष्ट से था, ना कि आदम, शैतान, उसको जाना दूसरी बार और जाना और पुत्र हुआ था, और उसका नाम श्वेत रखा, कि परमेश्वर ने मेरे लिए ये वास्तविक वंश नहीं था, आदम की संति जिसको केन ने घात किया, एक और वंश ठहरा दिया। इसलिए और शेत के भी पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे, ना कि केन के से, वो पीढ़ी वंश, परंतु शेत की वंशावली। इसलिए केन दुष्ट था, वहाँ सर्प आता है। अब ध्यान दें, ये बाइबल स्पष्ट रूप से कह रही है उसके पहले पति को मरना ही चाहिए, ना कि छोड़ देना, उसे मरना ही है। मैंने विवाह और तलाक पर प्रचार कर दिया और आप सब ये बातें जानते हैं, मैं इस समय नहीं बोल रहा हूँ। कुल मिलाकर ये भक्त मंडली यहाँ पर है, परंतु बाहर समस्त राष्ट्र में है। ठीक, अब आप देखते हैं कि वहाँ क्या घटित हुआ विवाह और तलाक में, जब ये सात मोहरे खुली थी और इसका वास्तविक सत्य निकाल कर लाए। इसलिए दूसरे आदम से विवाह करने के लिए मसीह वचन आपको मृत्यु के द्वारा ही अलग होना है अपने पहले नामधारी पति से, क्योंकि उनमें से कोई भी ऐसा नहीं जो परमेश्वर के सारे वचन को ले सके। मुझे जरा दिखाएं कहां वो एक हैं। ओ, आप कहते हैं मेरा, दूसरा व्यक्ति कहता है उसका भी। उन दोनों को एक साथ कर दो और आप पाएंगे कि दोनों गलत हैं, वैसे जैसे आप नामधारी होते हैं। पढ़िए प्रकाशित वाक्य 17। इसलिए आप देखते हैं कि आपको उस चीज के लिए मर ही जाना चाहिए। मैं इस समय स्थानीय कलीसिया से नहीं बोल रहा हूँ, मैं समस्त राष्ट्र से बोल रहा हूँ। आपको अपने पहले पति के लिए मर ही जाना चाहिए यदि आप मसीह से जुड़े हैं और आप अब भी नामधारी से विवाहित हैं। आप एक व्यभिचारी हैं, आप लुदेकिया हैं। एक कलीसिया समस्त राष्ट्र में हम लोग यीशु मसीह वचन का अनुकरण कर रहे हैं। दुल्हन में होने को आपको परमेश्वर के वचन के साथ फिर से विवाह करना है, जो कि मसीह है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वचन देहधारी हुआ और हमारे मध्य में वास किया। जब तक आप नामधारी के रीतियों को पकड़े हुए हैं, तो आप परमेश्वर के वचन में एक व्यभिचारी कहलाते हैं। जब तक आप नामधारी के मतसार के खोजी हैं, नामधारी कलीसिया से जुड़े हैं जो वचन का इनकार करती है, आप एक व्यभिचारी हैं। यही जो बाइबिल ने कहा। यीशु ने कहा, आप दो ईश्वरों की सेवा एक समय नहीं कर सकते। आप या तो परमेश्वर की या मेमन की। मेमन संसार है, वो जो संसार से प्रेम करता है या उसकी चीजों से प्रेम करता है, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम है ही नहीं। उसी समय में परमेश्वर का बीज उसमें नहीं हो सकता। परमेश्वर का प्रेम, संसार का प्रेम उसमें है। जब परमेश्वर का बीज आपके द्वारा कार्य कर रहा है, जो कि परमेश्वर का वचन है, उसी समय में संसार का प्रेम नहीं हो सकता। अब छोटे बाल कहाँ हैं, छोटे कपड़े, रंगे हुए चेहरे, अब ये कहाँ हैं? आप मसीह के गुण नहीं हो सकते। परमेश्वर का वचन और मनुष्य का बनाई हुई नामधारी एक ही समय में, ये वचन विरोधी है। पौलुस ने यहाँ कहा, कहीं रोमियो 7, ना ही आप परमेश्वर के पुत्र जन्मा सकते उसके वचन के इस अवैध नामधारी का झुंड। आप ये नहीं कर सकते। अपने अंडे निकालने की मशीन में आप परमेश्वर का वचन पुत्र नहीं जन्मा सकते। मैं कलीसिया से बोल रहा हूँ। परंतु फिर भी आप बहुत धार्मिक होने का दावा करते हैं। ऐसे ही केन था, व्यभिचारिणी, हवा का पुत्र, बहुत ही धार्मिक, वेदियां बनाई और बलिदान चढ़ाए, उसका दशमांश दिया और हर वो कार्य किया जो कोई दूसरा धार्मिक व्यक्ति करेगा। परंतु वो वचन का पालन करने में असफल रहा, वो प्रकाशन पाने में असफल रहा। और प्रकाशन ही केवल एक चीज है, वचन का प्रकाशन क्या है? प्रकाशन क्या है? यीशु ने कहा, इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक के फाटक इसके विरोध में प्रबल नहीं हो सकते। विश्वास प्रकाशन है, क्योंकि विश्वास आप पर प्रकट किया गया। विश्वास के द्वारा हाबिल ने प्रकाशन के द्वारा चढ़ाया। विश्वास केन से परमेश्वर को उत्तम बलिदान चढ़ाया। केन ने सोचा उन्होंने सेब खाया। उनके अब भी वही विचार हैं, परंतु ये नहीं था, ये व्यभिचार था, सर्प का वंश। और वहाँ जहाँ सात मोहरें खुली, इसने घोषणा की और इसे सिद्ध किया। इस पर मेरी पुस्तक अभी प्रकाशित हुई है। सोचिए, हमारे पास यहाँ हजारों हैं, समझे? ध्यान दें, ये वचनानुसार है, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक। अंत के समय में दोनों वृक्ष बीज पर आ रहे हैं और स्वयं को सिद्ध कर रहे हैं। आज हम ठीक यहाँ पर लुदेकिया और दुल्हन, ऐसे ही स्पष्ट और सुंदर जितनी वचनों में हो सकती हैं, और ठीक आपके सामने। और परमेश्वर और संसार की सेवा नहीं कर सकते। आप बाइबल पर विश्वास करने वाले धर्मात्मा, मसीही और स्वयं को नामधारी के मामलों में संबंध रखें, नहीं हो सकता। आप ये एक समय में नहीं कर सकते। एक को मरना ही है और दूसरे वाले को जीने दें। ना ही आप परमेश्वर के वचन के पुत्र जन्मा सकते हैं, ना ही कलीसिया जन्मा सकती है। वे उनमें से एक नहीं चाहते। रोते हुए बालक, चिल्लाते हुए और अन्य अन्य भाषा बोलते हुए, और वे सारी चीजें आप ये नामधारी कलीसिया में नहीं कर सकते। वे आपको नहीं लेंगे। वे उन्हें ऐसे नहीं लाते, वे उन्हें लेकर और उनसे हाथ मिलाते और कहते हैं, यदि आप विश्वास करते हैं तो आपको मिल गया। जब तक आपका नाम पुस्तक में है, बस आपको यही करना है। देखिए, ये वचन के अवैध बालक हैं, फिर भी धार्मिक होने का दावा करते हैं। इसलिए शैतान की बुद्धि और ज्ञान से कलीसिया गर्भित हो गई है। उन्होंने अपने लोगों को विद्यालय में भेजा कि सीखें कैसे आमीन कहें। ठीक है, बस वे उन्हें सिखाते हैं कि ये सब कैसे कहते हैं और बुद्धिमान हो गए। ये क्या है? ये शैतान का गर्भ है। शैतान ने हवा को क्या गर्भित किया? बुद्धि के लिए वचन का अविश्वास करे बुद्धि, और इसने समस्त सृष्टि को नष्ट कर दिया। ठीक यही जो आज इसने वचन में किया। कलीसिया ने इसने स्वयं को बाइबल विद्यालयों और कॉलेजों और इस प्रकार की चीजों से गर्वित किया है। पढ़ना लिखना, गणित और वे परमेश्वर के विषय में उन हॉटेंटॉट से अधिक नहीं जानते जैसे वे मिस्री योद्धा के विषय में। वे बस अपने सारे मत्सार और उनकी प्रार्थनाएं पुस्तकें और हर चीज, परंतु परमेश्वर के विषय में कुछ नहीं जानते। वे जानते हैं जब वचन प्रमाणित हुआ, जब वहाँ परमेश्वर बोला और प्रत्येक युग के लिए वचन ठहराया। जब वे आए, यहाँ नूह आता है और उसने उस पीढ़ी को प्रचार किया। अब क्या होता है यदि मूसा आकर कहे हम एक नाव बनाए? ये विधि से बाहर था, परंतु वो एक भविष्यद्वक्ता था। उसके पास परमेश्वर का प्रकाशन था। परमेश्वर ने इसे सत्य सिद्ध किया। वो बालकों को बाहर, इसराइल को बाहर लाया, उनके सामने अग्नि स्तंभ दिखाया और नबी को प्रमाणित किया और बिल्कुल वही कहा जो वो करेगा, और उसने ये किया। उन्होंने कहा परमेश्वर ना बोले, मूसा बोले, कहीं हम मर ना जाएं। उसने कहा मैं अब उनसे इसी प्रकार से बातें ना करूंगा, परंतु मैं एक भविष्यद्वक्ताओं को जो उठा खड़ा करूंगा, वे बोलेंगे। वहाँ यशाया खड़ा हुआ, कहा एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक दिन एक पुरुष उसके समान। जब कैसे एक कुंवारी गर्भवती होने जा रही है? इसलिए एक पुत्र उत्पन्न हुआ, एक बालक जन्मा, पुत्र दिया गया, उसका नाम युक्ति करने वाला, शांति का राजकुमार, सामर्थी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, अपने पिता दाऊद के सिंहासन पर वो राज्य करेगा, उसके राज्य का अंत ना होगा। ये कैसे होने जा रहा है उसे नहीं मालूम। उसने वही बोला जो परमेश्वर ने कहा। ये किसी भी कल्पना से परे है, बुद्धिमान, ये किसी वैज्ञानिक खोज से परे है, ये परमेश्वर का वचन है। अब हम अपने धर्म विज्ञानी विद्यार्थियों को सब प्रकार की बाइबल, धर्म विज्ञान और सब प्रकार की चीजें सिखाते हैं। मनुष्य निर्मित धर्म विज्ञान, कलीसिया का झुंड, ठीक एक लोदे किया जैसे परमेश्वर ने कहा ये होगा। ओ प्रभु, जब मैंने इसकी ओर देखा मुझे कपा दिया। बुद्धिमान की अवधारणा से गर्वित। आपको हाई स्कूल स्नातक होना ही है इसके पहले कि आप प्रवेश नहीं कर सकते। आपके पास होना ही है अभिषेक होने से पहले मनोवैज्ञानिक के सामने समक्ष खड़ा होना है। क्या आप पत्रस की कल्पना करेंगे याकूब और योहन्ना मनोवैज्ञानिक के समक्ष? स्मरण रखें, 120 वहाँ पर थे, यहाँ तक कि अपने नाम के हस्ताक्षर भी नहीं कर सकते थे, मनोवैज्ञानिक के सामने खड़े हुए। देखिए, यदि उनके प्रतिक्रिया ठीक थी और आदि आदि, उनमें प्रतिक्रिया थी, परंतु ये बुद्धिमानी की अवधारणा नहीं थी या वैज्ञानिक खोज, ये परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा था। जब ये उन पर आता है, वे करने के लिए कुछ नहीं जानते, परंतु वही कार्य करते हैं जो पवित्र आत्मा करने को कहता है। वे किसी भी बुद्धिमान पर कोई ध्यान नहीं देते। कलीसिया ने क्या कहा और पुरोहित ने क्या कहा, ये क्या कहा, वो कहा, वे आत्मा के चलाए चलते हैं, निडर पुरुष। पहले यूहन्ना 2:15 में उसने कहा यदि आप संसार से प्रेम करते हैं या संसार की चीजों से, तो परमेश्वर का प्रेम आप में है ही नहीं, समझे। इसलिए आप परमेश्वर के वचन से गर्वित हो सकते हैं जो कि संसार को दोषी ठहराता है, हॉलीवुड को दोषी ठहराता है, उसके सारे चलन को दोषी ठहराता है, इन सब दावतों को दोषी ठहराता है और कहलाने वाले धर्म के नाम में चला रहे हैं, ये इसे दोषी ठहराता है। वचन व्यक्ति को कैसे गर्वित करता है? कैसे उस बाल कटी हुई स्त्री, रंगे चेहरे, छोटे छोटे कपड़े पहने को कर सकता है? कैसे एक प्रचारक धर्म विद्यालय में जाता और प्रेरित 2:38 को देखता है कि बाइबल में कभी भी कोई व्यक्तियों ने उन उपनामों में बपतिस्मा पाया, और फिर भी कहे कि उसे परमेश्वर के वचन का गर्व है? आपसे झूठ बोल रहा है। उसने अपना जन्म सिद्ध अधिकार बेच दिया। जो बात उसने कही उसी के विरोध में व्यभिचार किया, वो तलाक से छोड़ दिया गया। परमेश्वर गुण संपन्न कलीसिया लेने जा रहा है, बिल्कुल ठीक एक दुल्हन। बाइबल ने कहा वचन तुम में नहीं है, इसलिए आप किस प्रकार के बालक जन्मा रहे हो? नामधारियों का गर्भधारण, वहाँ कोई मृत्यु नहीं थी कि आपको अपने पहले प्रेमी से अलग करे। जॉनसन क्या सोचता है यदि आप रोना और अन्य भाषा में बोलते हैं? वे क्या सोचेंगे यदि मैं फिर से बपतिस्मा लूं? क्या ही निरर्थक बात। क्या आप जॉनसन से विवाहित हैं? क्या कलीसिया से विवाहित हैं? क्या आप मसीह के वचन से विवाहित हैं? अब इसलिए वो अब भी बालक उत्पन्न कर रही है, उसके पास किस प्रकार के बालक हैं। यहाँ उनके कुछ नाम हैं जो आज कहलाते हैं, बिल्लियाँ, बीटल्स, मॉन्स्टर, आवारा लफंगे, बिल्लियाँ, बीटल्स, ये कलीसिया के सदस्य हैं निश्चय ही। ये सब इसके पुत्र हैं, केन के पुत्र, जो कि धूर्त पशु के पुत्र हैं, उतने ही तेज जितने हो सकते। एक क्षण के लिए जरा अच्छी प्रकार अपनी आत्मिक आंखों से अपने प्राणों को देखें, चारों ओर देखें। अब मैं समस्त राष्ट्र से बात कर रहा हूँ, कुछ मिनटों के लिए देखें। आप जो बाहर बर्नन टबरनिकल में हैं, आप पश्चिमी किनारे और एरिजोना और हर कहीं जहाँ कहीं आप लोग हैं, कुछ मिनटों के लिए अपनी ओर देखें। आप कहते हैं ये संदेश जो आप प्रचार कर रहे हैं भाई बर्नम, ये गलत है। थोड़ा सा अपनी ओर देखें। पवित्र आत्मा आपके मस्तिष्क को वचन से जांचे, आप संदेश से सहमत हो जाएंगे। मसीह वो अभिषिक्त वचन आपके अपने विवेक को परखे, वो आपके भीतर आए, देखिए ये सही है या नहीं। और ये एक दो चीजों में उल्लेख करता हूँ, जबकि सैकड़ों हैं। क्या बाइबल स्त्रियों के बाल कटाने पर सहमत है? क्या बाइबल विश्वास करती है? सहमत है। तीन बपतिस्में, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में, ऐसी कोई चीज नहीं है। क्या बाइबल इस बात पर सहमत है कि स्त्री पुरुषों के कपड़े पहने? ठीक, तीन ही लें, जबकि सैकड़ों और हैं। इसे परमेश्वर के वचन की ज्योति में परखें। आप कहते हैं मैं कलीसिया का सदस्य हूँ, केन भी था, हवा भी थी। बाइबल भविष्यवाणी करती है कि अंत के दिनों में वो लुदिकिया वैसी ही होगी। पवित्र आत्मा आपके विवेक को जांचे और आप डेनियल 5:12 से सहमत होंगे, जब रानी बेलशेजर के सामने आई और कहा, उसने पाया कि उनके मध्य में भविष्य तख्ता डेनियल है और वो संदेहों को दूर करने वाला है। आप पवित्र आत्मा को करने दें, वो उस दिन का भविष्य तख्ता था, उसे अब अपने हृदय के भीतर आने दें और परमेश्वर के वचन से जांचने दें, और संदेश के विषय में संदेहों को समाप्त कर देगा, वो सारे संदेह दूर करता है। आप पाते हैं कि ये ठीक आज के वचन पर है। आप आज लूथर का वचन प्रचार नहीं कर सकते, ये इसमें जाता है, परंतु ये पैर है। ओ वैसली का नहीं प्रचार कर सकते, पेंटिकॉस्टल का नहीं प्रचार कर सकते, हम उससे आगे हैं। वे नामधारी हो गए और मर गए, वे डंठल हैं। डंठल लंबी पत्ती के साथ आता है, ये कलीसिया की पहली स्थिति है। अब ये पहले दाने जैसा नहीं दिखाई पड़ता जो भूमि में डाला गया था, वो गेहूँ। दूसरा यह पराग आता है, ये अब भी दाने जैसा नहीं दिखाई पड़ता, इसके समान अधिक दिखता है, ये वास्तविक दाने की अधिक छवि में है। परंतु वो लंबी पत्ती निश्चय ही दाने के समान नहीं दिखाई पड़ती है, जो भूमि में गया था, ये जीवन को ले आने वाला है जो कि दाने में था। परंतु उसने क्या किया, ये नामधारी हो गया, जैसे कि दूसरी सारी प्रकृति इसमें सही बैठती है, वो मर गया। फिर क्या, जीवन सीधे फुंदनी में जाता है, इसमें सब कुछ छोटा सा होता है, इस पर छोटी छोटी गोलियां लटक रही हैं, छोटी दिख रही हैं, इसमें छोटे दाने हैं, ऐसा दिखता है, इसमें वास्तविक दाने हैं, परंतु ये नहीं है। तब ये भूसे में आ जाता है, और ये क्या उत्पन्न करता है, एक भूसा। अब आप गेहूं का एक दाना लें, जब पहले दाना आता है और यीशु ने कहा गेहूं का एक बीज, और आप वो गेहूं लेकर और इसे खोलें, आप फुंदनी को खोलें और इसे देखें, आप कहते हैं हमारे पास गेहूं का दाना है। होशियार रहें, ये ठीक दाने के समान है, परंतु इसमें जरा भी दाना नहीं है, ये भूसा है। वहाँ पेंटिकॉस्टल है, बहुत कुछ, जैसे मत्ती 24:24 ने कहा, अंत के दिनों में चुने हुओं को धोखा देंगे यदि ये संभव है। परंतु आप एक एक पत्ती करके खींचें, आपको दाना नहीं मिलेगा, दाना तो इसके पीछे है, समझे? और फिर जीवन नामधारी में से आता है, दाने में जाता है। तो फिर क्या होता है, जब दाना बढ़ने लगता है कि बड़ा हो ताकि ये कुछ घेर सके, नामधारी इससे अलग हो जाता है। क्यों नहीं हम इसमें से नामधारी निकाल पाते हैं? वे कभी नहीं निकाल पाएंगे, ये दाना है और ये आगे नहीं जा सकता, हम अंत के समय में हैं। इसलिए अब इसने क्या करना है, पुत्र की उपस्थिति में रहना है कि पक जाए, ये बिल्कुल ठीक है। वचन आपके हृदय में पकना है ताकि ये ले आए और जिस विषय में हम बात कर रहे करते हैं उसे जिए। जी हाँ श्रीमान, तब आपको कोई संदेह नहीं रहेगा यदि आप पवित्र आत्मा को ये अपने ऊपर प्रकट करने दें, जैसे रानी ने डेनियल के विषय में कहा था। आप कह सकते हैं इसका धन्यवाद के साथ क्या लेना देना है, आप किस विषय में बातें कर रहे हैं भाई बहनम? यहाँ 9:15 बज गए हैं, आपने धन्यवाद देने के विषय में कुछ नहीं कहा। इस समय के लिए क्या ही संदेश है मेरे लिए। जी हाँ, वास्तव में परदेशी पूर्वज जीवन के नए पाए हुए मार्ग के लिए बहुत धन्यवादित थे। पुराने अंग्रेजी नामधारी और मत्सार से अलग होते हुए वे नए से विवाह कर सकते थे, उनके युग का अभिषिक्त वचन, ये ठीक बात है, नया उनके युग का वचन उनके दिन के लिए। इसलिए हम धन्यवादित हो सकते हैं एक परदेशी के समान, जैसे अब्राहम। उसने स्वयं को संसार की वस्तुओं से अलग कर लिया। हमारे सारे जुड़े हुए लोग, अब्राहम एक परदेशी था। परमेश्वर ने हमें सारे उस मृत धर्म से अलग कर लिया। अब मैं समस्त राष्ट्र से बोल रहा हूँ, सारे मृत मत्सार, किससे हमें अलग किया और हमारे लिए एक नया देश दिया और एक नया संदेश इस दिन के लिए। पेंटिकॉस्टल लूथर के समान सूख गया और मर गया। वेस्ली और बाकी सब, ये और कुछ नहीं, कलीसियाओं का झुंड जमा है। अच्छे लोग वहाँ हैं, फिर भी बाहर आना है। उसने क्या किया? उसने अंतिम संदेश की सात मोहरों को खोला। आपने ये ध्यान दिया? सात मोहरें, जिसमें सात कलीसियाओं के सारे भेद सात मोहरों में बंद थे। सुधारकों के पास उनके दिनों में उनके पास समय नहीं था, वे बहुत अधिक नहीं जीवित रहे। परंतु सात मोहरों का ये धन्य प्रकाशन, ये हम पर अंत के दिनों में खुला। उस भविष्यवाणी से एरिजोना को पहुंची। उस दिन मैंने परमेश्वर से पूछा कि आप मेरे साथ इस रेगिस्तान में बाहर क्या कर रहे हैं? क्या तुम जानते हो मूसा ने नया नियम लिखा, यानी पुराना नियम? निश्चय ही उसने लिखा। पहली चार पुस्तकें व्यवस्था की हर चीजें देती है, उत्पत्ति, निर्गमन, लेव व्यवस्था और व्यवस्था विवरण। उसने पुराना नियम लिखा यह करने के लिए उसे अपने सारे संबंधियों और प्रियजनों को छोड़ना पड़ा और रेगिस्तान को जाता है। पौलुस ने नया नियम लिखा, यह ठीक बात है। उसने रोमियों और बाकी सब इब्रानियों और तिमोथियस और आदि आदि, और ये करने को उसे स्वयं से अलग होना पड़ा और अरब को चला गया रेगिस्तान में 3 वर्षों के लिए परमेश्वर का प्रकाशन पाने को। ओ, आप कहते हैं मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना के विषय में क्या है? वे लेखक थे। जो भी यीशु ने किया उन्होंने लिखा। पौलुस अलग हुआ कि वचन को एक साथ करे, ये ठीक बात है। तो फिर देखें, यदि इसने ये लिया और उसे रेगिस्तान को जाना पड़ा अपने प्रियजनों से दूर, क्या स्मरण रखें? श्रीमान, ये क्या समय है? कितनों ने ये कभी सुना है? कहें आमीन। क्या ये बिल्कुल सही था? तब हमें अंतिम दिनों में ये प्रकाशन मिला, उस प्रभु परमेश्वर का संदेश कि दुल्हन को इकट्ठा करे। किसी और युग में इसकी प्रतिज्ञा नहीं की गई। मलाकी 4, लूका 17:30, संत यूहन्ना 14:12, योएल 2:38, ये प्रतिज्ञाएं ठीक वैसी ही हैं जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला स्वयं को वचन में प्रमाणित करता है। यीशु स्वयं को प्रमाणित करता है। वे क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्ति से दूर, यूहन्ना जंगली पुरुष है। कलीसिया इसे ग्रहण करने योग्य न थी, ये नमूना है, न ही कलीसिया आज स्वीकार करती है। परंतु चुने हुए, परमेश्वर चुने हुए को बुला रहा है, वे से जानते हैं। गुणकारी दुल्हन को पुकार रहा है वचन, अंतिम दिन की कलीसिया चुनी हुई, हमारे प्रभु यीशु मसीह की स्त्री वचन। यदि यीशु वचन है, कितने ये विश्वास करते हैं? ठीक है, तो फिर दुल्हन सदा दूल्हे का भाग है। ऐसे ही दुल्हन नामधारी नहीं होगी, इसे वचन ही होना है, प्रकट हुई मसीह की दुल्हन। उसने ये करने की प्रतिज्ञा की है। उसने कहा, उसने कैसे किया? कभी भी अपना नमूना नहीं खोया। उसने सदा ये नमूने से किया है, उसने ये हर बार किया है नमूने के द्वारा। वो फिर करता है, अंत के दिनों में अपनी गुणकारी दुल्हन को बुला रहा है। प्रिय रिबका अपने इज़ाक की प्रतीक्षा कर रही है। क्या ही सुंदर समय है। यहाँ ये दृश्य में लाता है दो पुस्तकें जो आपके लिए भेदपूर्ण होने जा रही हैं, जब आप सात कलीसियाई युग की पुस्तक पढ़ते हैं। दो पुस्तकें, जीवन की पुस्तक, कहा एक कहता है आप अपना नाम उसमें से नहीं लिख सकते, आप कभी भी नहीं निकाल सकते। दूसरा कहता है आप उसका नाम जीवन की पुस्तक में से हटा दें। ये बिल्कुल सिद्ध दृश्य में लाता है। ठीक यहाँ पर मैं कुछ मिनटों के लिए रुकने जा रहा हूँ, संभव है यहाँ कुछ टिप्पणियों पर, और बंद करने से पहले इसे समझ लें। परमेश्वर के लिए जीवन पवित्र चीज है और इसका अभिलेख पुस्तक में है। परमेश्वर जीवन का रचने वाला है, क्या आप ये विश्वास करते हैं? हमारा प्राकृतिक जीवन यहाँ पर जो हमारा है केवल एक मिलावट है। वास्तव में इसे आरंभ से ही सही जीवन होना चाहिए, परंतु ये शारीरिक जन्म से दूषित हो गया। पहला जीवन या आपका पहला मिलन, आप जन्म में प्रकृति के द्वारा जोड़े गए, एक प्राकृतिक कार्य, एक स्वाभाविक मनुष्य जुड़ने के द्वारा, पुरुष और स्त्री आप में एक साथ काम वासना के द्वारा एक दूसरे से जुड़ते हैं, जो कि आपका पहला जीवन यहाँ लाते हैं, और ये पाप और मृत्यु से जुड़ा होता है। आप कैसे सर्वंश को देखने से चूक सकते हैं? जब आप एक स्त्री को देखते हैं, एक उत्पाद, उसके समान और कोई मादा नहीं, इस प्रकार की बनी हुई, जानते हुए उसे धोखा दिया जा सकता है। परमेश्वर जानता था। यदि वो आरंभ से अंत नहीं जानता तो फिर वो परमेश्वर नहीं था। यदि वो अनंत नहीं है, यदि वो नहीं है और वो अनंत नहीं हो सकता, बिना सर्वज्ञान के सर्वव्यापी सारी चीज जानता है, अनंत है, इसलिए वो सब जानता है। और उसे उस स्त्री को बनाना था। मनुष्य के पास पत्नी नहीं थी, स्त्री और पुरुष एक से थे, उनमें नारी और नर आत्मा उसमें थी। उसे अलग करना था, एक उप उत्पाद लेता है और सारी सृष्टि रचने के बाद परमेश्वर के द्वारा कोई नारी नहीं बनाई गई। उस मूल सृष्टि में एक चीज ऐसी कर सकता था, उसे इस प्रकार बनाया गया। इसे करने को उसे मालूम था वो ये करेगी। यदि वो नहीं जानता था तो वो परमेश्वर नहीं था। परंतु देखिए, वो गुण जो परमेश्वर में थे उन्हें प्रकट होना था, उसका एक बचाने वाला और हर चीज को सिद्ध बनाना, जिस प्रकार ये उसके पास थी, तब वहाँ कोई चीज नहीं खो सकती। ओ बालक ना बनो, पुरुष और स्त्रियां बनो। हम मार्ग के अंत में हैं। ध्यान दें, अब ये स्वभाव मृत्यु से जुड़ा था। आपका पहला पति जिसने आप पर प्रभुता की, वो आपका स्वभाव, स्वाभाविक जन्म के द्वारा, स्वाभाविकता से आप संसार से प्रेम करते हैं, क्योंकि आप संसार हैं और संसार के भाग हैं। ये ठीक बात है। आपकी इच्छाएं स्वभाव से थी कि संसार से प्रेम करें, जो कि आपका भाग है। आप प्रकृति का भाग हैं। आप ये विश्वास करते हैं और ये आपकी स्वाभाविक चीज है। यही कारण है कि आपको नया जन्म लेना अवश्य है। आपको अलग होना है, आपको पहले पति के लिए मरना है। आप उसके साथ नहीं रह सकते। बस आप नहीं कह सकते, भाई मैं उसे तलाक दे दूंगा और एक समय तक के लिए टांग दूंगा। नहीं श्रीमान, कोई लिखित तलाक नहीं, वो मर गया। संसार के स्वभाव को मरना ही है, उसका हर कण कण मरना ही है। आपको फिर से दूसरे स्वभाव से ही जुड़ना है। आपका नाम आपके पहले स्वभाव का जन्म था और जीवन की पुस्तक में लिखा गया। आपके सारे कार्य उसमें भी लिखे गए। हर चीज जो आपने उस स्वभाव में की उस पुस्तक में लिखा गया, जीवन की पुस्तक कहलाई। आप ध्यान दें, डेनियल में जब वो आता है, एक प्राचीन जिसके बाल ऊन के समान श्वेत हैं, हजारों हजार उसके साथ आए कि उसकी सेवा करें, दुल्हन की। और फिर पुस्तकें खोली गईं और दूसरी पुस्तक खोली गई थी जो कि जीवन की पुस्तक है, समझे। वहाँ संत पहले ही हैं, वो कलीसिया दुल्हन। दूसरी पुस्तक खोली गई जो कि जीवन की पुस्तक थी। अब आप, परंतु जब आप उस मिलाप से अलग हो गए थे आत्मिक मृत्यु के द्वारा, आपकी स्वाभाविक इच्छा आपके बाल काटने की है, आपकी स्वाभाविक इच्छा छोटे छोटे कपड़े पहनने, अपना चेहरा रंगने की है, आपकी स्वाभाविक इच्छा बुद्धिमान चतुर पुरुष, कुछ ऐसा जो दूसरों से अच्छा जानते हों। यही हवा ने चाहा, यही चीज उसने चाही। अच्छा, कहते हैं आप छोटे दो टुकड़े, दो गुना चार के प्रचारक, वहाँ खड़े होकर मुझे बताओ, मेरे पास PhD LL है, ये आपको परमेश्वर से अलग ले जाएगा। हर बार आप एक चीज बढ़ाएंगे, समझे, ये ठीक बात है, ये सच है, समझे। यही जो हवा ने लिया, वो इसी प्रकार के गर्भ से गर्भित थी। आज कलीसिया भी यही है, बाइबल विद्यालयों के द्वारा और ज्ञान, और देखिए हर कोई दूसरे से असहमत, एक बड़ा गड़बड़। ठीक वही जो बाइबल ने कहा, बाबुल, दुल्हन जानती है कि वो कहाँ पर खड़ी है, वो बहुत थोड़ी है, वहाँ बहुत से नहीं बचेंगे, बस बहुत बहुत थोड़े। आप कहते हैं अच्छा, वहाँ कहा है हजारों, जी हाँ, परंतु वे 2000 वर्षों से आए हैं, हर युग से, जहाँ से ये बाहर आए। कभी लूथर का युग और वो झुंड, और फिर वो मर गए और वे नामधारी हो गए, तब वेस्ली और फिर पेंटिकॉस्टल आए और आदि आदि, और सारी बैप्टिस्ट की छोटी डालियां, प्रेस्बिटेरियन, मेथोडिस्ट, नाजरीन, पिलग्रिम ऑफ होलीनेस और आदि आदि, देखिए सब डालियां वहां से पत्तियों के समान निकली। परंतु उसमें रखें, जब ये नीचे गया और बीज पकने लगे, आप पालते हैं इसके पहले कि बीज पक सके, उस फुंदनी में हर चीज को मर जाना है। हालेलुया, देख नहीं सकते कि हम कहां पर खड़े हैं। जीवन फिर से बीज में है। ये क्या है? ठीक बिल्कुल वही बीज जो भूमि में गया था, वही यीशु दुल्हन के रूप में, वही सामर्थ, वही कलीसिया, वही चीज, वही वचन। यही वचन इनके द्वारा चूसा गया और यहाँ आया और यहाँ सिर तक आया, और ये सारा जीवन जो होता हुआ यहाँ आया, इसने अपने लोगों को लिया। अब ये सिर में ढल रहा है उठा लिए जाने के लिए। आने वाली रात्रि पर बोल रहा हूँ, या अगली रात्रि, एक प्रभु ने चाहा तो। भाई आप अपने पहले मिलन से उस मृत्यु के द्वारा अलग हो गए हैं। अब आपने फिर से जन्म लिया या फिर से विवाह किया, उस नए आत्मिक मिलन में संसार की वस्तुओं के आपके स्वाभाविक जीवन के द्वारा नहीं, परंतु अनंत जीवन, वो जीवांश जो आप में आरंभ में था, आपको ढूंढ लिया। अब आपकी पुरानी पुस्तक चली गई, आपके पुराने मिलाप से अब आपका नाम आपके पुराने आपके स्थानांतरण कर दिया गया। अब आप कहते हैं, क्या मुझे बताने का आपका अर्थ है कि मेरी पुरानी पुस्तक, परमेश्वर ने इसे अपने भूल जाने वाले समुद्र में डाल दिया, आप परमेश्वर के समक्ष सिद्ध खड़े हैं। अब आपका नाम अब नई पुस्तक में है, न कि जीवन की पुस्तक में, परंतु मेमने की जीवन की पुस्तक में, जो कि मेमने ने छुड़ाया है, न कि आपके स्वाभाविक मिलन की पुरानी पुस्तक में, परंतु आपकी नई दुल्हन, हल्लुया, आपका नया जीवन मेमने की जीवन की पुस्तक में है, आपका विवाह प्रमाण पत्र, हल्लुया, जहां आपका सच्चा अनंत जीवांश आरंभ से थामे हुए है। अब आप केवल क्षमा ही नहीं किए गए, परंतु आप न्यायोचित किए गए, महिमा हो, न्यायोचित, रोमन 5:1 ने कहा, जी हाँ, रोमियो 5:1 ने कहा, इसलिए विश्वास के द्वारा न्यायोचित ठहराए गए। वचन को देखें, शब्द का अर्थ क्षमा करना नहीं, वचन का मतलब न्यायोचित ठहराना। इसका अर्थ ये नहीं कि आप क्षमा किए गए। उदाहरण के लिए, आपने सुना कि मैंने मद्यपान किया और कुछ बुरा कार्य किया और सब कुछ, तब आप आते हैं मुझसे कहते हैं कि आपने पाया कि मैंने नहीं किया, तब आप आते हैं और कहते हैं, भाई ब्रैनम, मैं आपको क्षमा करता हूँ। मुझे क्षमा करते हैं, पहली बात कि मैंने ये किया ही नहीं, समझे। अब यदि मैंने ये नहीं किया, मैं अपराधी हूँ, परंतु आप मुझे क्षमा कर सकते थे और मैं अपराधी नहीं होता, परंतु फिर भी मैं न्यायोचित नहीं हूँ, क्योंकि मैंने वास्तव में ये किया है। परंतु वचन न्यायोचित कि आपने ये कभी किया ही नहीं, आमीन, ये बिल्कुल ये मान्य नहीं है। ये कैसे हो गया? परमेश्वर के समुद्र में भूल जाने वाली पुस्तक, आपकी पुरानी पुस्तक में, और विवाह, तलाक और मृत्यु, यहाँ तक कि परमेश्वर को ये याद भी नहीं, आमीन। आप न्यायोचित हो गए, इसलिए न्यायोचित होते हुए ये दोषारोपण था, आप पर दोष लगाया गया, आपने ये कभी नहीं किया। सबसे पहली बात, पुराना मिला परमेश्वर के भूल जाने वाले समुद्र, आपका इससे विवाह हुआ ही नहीं आरंभ से। वो दूल्हा, उसने आपकी लज्जा को उठा लिया स्वयं अपने पर, आपके स्थान पर, उसने आपका स्थान लिया, क्योंकि आप उसके लिए पहले से ठहराए गए थे कि उसकी दुल्हन में हो, संसार की सृष्टि से पहले। बाइबल ऐसा कहती है, आप ठहराए हुए वंश हैं। आप ये करने को कैसे आए? आप पहले विवाह के द्वारा इस धोखे में आए। आपके व्यभिचारी अभिभावक हवा, ये आपकी अपनी गलती नहीं है, आपके स्वाभाविक जन्म के द्वारा आप हवा के बाद आए, जिसने व्यभिचार किया। यही कारण है कि आप व्यभिचारी जन्मे, आप आरंभ से ही पापी हैं, ये ठीक बात है। आपको धोखा दिया गया था, आपके पास नहीं, आप गलती पर नहीं थे, आपने ये कभी नहीं किया, क्योंकि वो छोटा जीवांश जो आप में था संसार की सृष्टि से पहले आपको होना था। परमेश्वर ने आपका नाम मेमने की जीवन के पुस्तक में लिखा, मेरी छोटी उकाब की कहानी के समान, आप सबने ये सुनी है। एक मुर्गी, बूढ़े किसान ने एक मुर्गी अंडों पर बैठाई, उसे एक उकाब का अंडा मिला और उसे भी उसके नीचे डाल दिया। जब उकाब जन्मा था, वो दिखने में विचित्र चूजा था, जो चूजों ने कभी, ये छोटा उकाब साथ साथ चल रहा था और मुर्गी करेगी क्लक 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 करेगी। छोटे उकाब ने कहा, मैं नहीं जानता ये कैसी आवाज निकालती है, परंतु जो भी है मैं अनुकरण कर रहा हूँ। और वो पीछे के आंगन में गए और खाद के कूड़े के ढेर में पंजे चलाने लगे और वो क्लक क्लक क्लक, ये अच्छा है, आप हमारे सदस्य हो जाएं, यही जो। वो छोटा उकाब, वो उन चीजों को नहीं खा सकता, समझे, वो बस चूजों के साथ चलता रहा, क्योंकि उसे मालूम ना था, वो नहीं जानता था कि क्या करे। और वो वहाँ बाहर गया, वो ये या वो लेगा, वो छोटा उकाब, उसे पेट भरना था, परंतु वो नहीं जानता था कि क्या करे। परंतु उसने सब चूजों को ये करते देखा, परंतु कुछ भिन्न था, उसे ये अच्छा नहीं लगा। इसलिए एक दिन माँ जानती थी कि उसने दो अंडे दिए हैं, इसलिए वो दूसरे वाले को ढूंढने लगी, चारों ओर उड़ रही थी, महान पवित्र आत्मा के समान खोज रही थी। एक दिन पिछवाड़े वो नामधारी आंगन के ऊपर उड़ी, उसने वहाँ नीचे देखा और उसने अपने बच्चे को देखा, वो चिल्लाई, ये वो आवाज थी जो कुछ उसके अंदर गूंज गई, ओ ये ठीक सुन पड़ता है, ओ वो वास्तविक ठहराया हुआ जन्मा हुआ जीवांश परमेश्वर के द्वारा ठहराया हुआ परमेश्वर का वचन सुनता है, उसके लिए ये संगीत है, वो जानता है ये सत्य है। वो नामधारी की बातों से उकता गया, जो भी हो, आओ हमारे सदस्य बनो, हमारे साथ चलो, हमारा सामाजिक झुंड है, हमारे पास ये है, हमारे पास है, ये ठीक नहीं लगता है छोटे को। उसने कहा, पुत्र तुम उस झुंड के नहीं हो, जो भी है तुम मुझसे हो, तुम मेरे हो। उसने कहा, मामा ये ठीक सुन पड़ता है, मैं कैसे इससे बाहर आऊं, बस एक छलांग लगाओ, मैं तुम्हें पकड़ लूंगी, ओ बस तुम्हें इतना ही करना है। किसी भी मनुष्य के सामने परमेश्वर का अभिषेक वचन प्रमाणित होता है, जो परमेश्वर का पुत्र होने को नया जन्म लेता है, उस पहले ठहरा जीवांश के साथ इस घड़ी के लिए वो परमेश्वर का संदेश उतनी निश्चितता के साथ देखेगा जैसा कि परमेश्वर स्वर्ग में है। मार्टिन लूथर ने इसे अपने लिए देखा, वेस्ली ने इसे अपने लिए देखा, पेंटिकॉस्टल ने इसे अपने लिए देखा। अब आपके विषय में क्या है, समझे? वे नामधारियों में चले गए। यहाँ वचन इसे दोषी ठहराता है, आपको बता रहा है कि आज हमारे पास क्या है, और बिल्कुल ठीक मलाकी चार और ये सारी प्रतिज्ञाएं इस घड़ी के लिए। आप क्या देखते हैं? आप कहाँ देख रहे हैं? आमीन। यहाँ हम हैं, वास्तविक सच्चे का आप सुनते हैं। मेरी भेड़ मेरा शब्द जानती है, अपरिचित के पीछे वे न जाएंगी। क्यों? ये वहाँ पहले से ठहराए रखे गए हैं। आप पहले से चुने गए हैं कि परमेश्वर के पुत्र हों। आप संसार की सृष्टि से पहले परमेश्वर में थे। आप केवल इस दिन में उसके सम्मान और महिमा के लिए प्रकट हुए हैं। आप बिना उसके वचन का सम्मान किए कैसे रह सकते हैं और परमेश्वर के हर वचन के साथ खड़े हों? जी हाँ श्रीमान, आप पहले से ठहराए जाकर उसके वचन का भाग हैं, क्योंकि देखते हैं परमेश्वर वचन है। आप इसका विश्वास करते हैं? अच्छा, तो फिर यदि वो सदा से वचन था, आदि में वचन था, और यदि वचन परमेश्वर था, तो फिर आप परमेश्वर में थे। वचन, वो भाग जो आपको करना था, सृष्टि के पहले से परमेश्वर में था। उसने आपको देखा, आपको जाना, इसके लिए पहले से ठहराया। मैं आपको बताता हूँ, जैसे वो उकाब उस आवाज को पहचानता है, ऐसे ही वास्तविक नया जन्म पाया हुआ मसीह परमेश्वर के वचन में से होते हुए आवाज को पहचानता है, जब वे देखते हैं कि ये अभिषिक्त और प्रमाणित है। देखिए, उसने वहाँ देखा, उसने बूढ़ी मुर्गी के आसपास क्लक क्लक करते नहीं देखा, हमारे सदस्य बनो, यहाँ आओ और इस पर आओ और ये और वो करो। उसने एक जीवन देखा जिसके समान वो होना चाहता था, हवा में उड़ता हुआ, चिल्ला रहा है, ऊंचाइयों में स्वतंत्र है, उन सारे गिद्धों से ऊपर और पृथ्वी की वस्तुएं। हालेलुया, वो होना चाहता था, क्योंकि वो होना उसके अंदर था। और एक मनुष्य जो परमेश्वर से जन्मा, परमेश्वर का पुत्र, उसके अंदर परमेश्वर का स्वभाव होना ही है। उसे परमेश्वर के समान होना है। वो परमेश्वर का सम्मान करता है, वो परमेश्वर के वचन का भाग है। और इन अंत के दिनों में इस दुल्हन को जो रूप धारण कर रही है, ठीक वही सामर्थ्य जिसमें वो पहले आरंभ में था, इन संस्थानों से होते हुए ऊपर आया और आदि आदि और दुल्हन के लिए बाहर आया, वो और कुछ नहीं हो सकता, केवल वो। उन्हें ये देखना ही है। वे यहूदी अपने दिनों में जब उन्होंने इसे अपने सामने प्रकट होते हुए देखा, जैसा कि भविष्यवक्ता ने कहा कि वो था, उसने कहा पवित्र शास्त्र में खोजो, उसमें तुम क्या समझते हो कि तुम्हें अनंत जीवन मिलता है? वो है जो मेरी गवाही देता है, यदि मैं अपने पिता के कार्य ना करूं तो मेरा विश्वास मत करो, परंतु तुम फिर भी मेरा विश्वास नहीं कर सकते हो, मेरे कामों का विश्वास करो जो मैंने किए। उन्होंने कहा हमारे पूर्वजों ने जंगल में 40 वर्षों तक मन्ना खाया, हम जानते हैं कि हम कहाँ हैं। उसने कहा और उनमें से प्रत्येक मर गया, ये अनंत अलगाव है, हर एक मर गया, केवल 3 ही थे, 10 लाख में से 2 निकल कर आए, 20 लाख जो कि 10 लाख में से एक। क्यों? एक प्रविष्टि, शुक्राणु नर से और मादा का अधिकांश एक ही अंडा उपजाऊ होता है, एक ही अंडा, एक ही जीवांश कोशिका जो उपजाऊ है। आपने पशुओं में मिलावट कभी देखी? ध्यान दें, यहाँ पर 10 लाख अंडे, यहाँ 10 लाख शुक्राणु, और जब उत्सर्जन होता है और गर्भ में एक साथ आए जो कि नलिका से होकर गर्भाशय में आता है, वे मिलते हैं, उनमें से एक अंडा, लाखों अंडे, लाखों शुक्राणु, उनमें से एक अंडा उपजाऊ होता है, एक शुक्राणु उपजाऊ होता है, वे सब जीवित हैं। आप उन छोटे छोटे बछड़ों को देख सकते हैं, वहाँ भागते रहते हैं, एक बूंद जो आप माचिस की तीली पर रख सकते हैं। और देमास और वे आज रात्रि सुन रहे हैं, और उसे स्मरण है जब हमने उन्हें लिया, वो मुझे वहाँ ले गया, मुझे दिखाया कि ये कैसे कार्य करता है। परख नलियाँ और जितना आप माचिस की तीली के सिरे पर ले सकते हैं, लें। हजारों छोटे छोटे बछड़े और सांड वहाँ हैं, परंतु इनमें से केवल एक जीवित रह सकता है, उनमें से केवल एक। और यहाँ उनका गोला है, और आप ध्यान देंगे, उनमें से एक बढ़ेगा, जाएगा, शुक्राणु यहाँ आता है और अंडा उन अंडों में से आता है, और वे एक साथ मिलेंगे और बाकी सब मर जाएंगे। फिर भी वे जीवित हैं, परंतु वे मर जाते हैं, क्योंकि वहाँ कुछ है, किसी ने एक को उपजाऊ बनाया और इसे ठहराया भी। मेरे भाई, ये पहले से ठहराया जाना है, निश्चय ही परमेश्वर ही निश्चित करता है कि ये लड़का या लड़की है, लाल सिर काला सिर या जो भी है, ये परमेश्वर ही तय करता है। मेरे लिए कुंवारी जन्म से अधिक ये भेद है, परंतु ध्यान दें, बाकी मर जाते हैं। वहाँ 20 लाख लोग निकल कर आए, गाया, चिल्लाए, सब कुछ किया, बोले, कभी भी भाषाओं में नहीं बोले थे, परंतु वे चिल्लाए और परमेश्वर की महिमा दी और ऊपर नीचे नृत्य किया, सागर पर और सब कुछ किया, तो बाकियों ने किया परंतु केवल दो ही प्रतिज्ञा के देश में गए। कालेब गया, कालेब और यहोशू, केवल दो, ये 10 लाख में से एक, स्वाभाविक जन्म में भी 10 लाख में से एक, प्रत्येक को वही एक आशीष मिली। ओ पेंतिकोस्तलों, में आशा करता हूँ तुम अधिक देर से नहीं जागोगे। एक 10 लाख में से, देखिए आज संसार में 50 करोड़ कहलाने वाले मसीही हैं। यदि यीशु आता है तो केवल 500 ही उसके साथ जाएंगे, यदि ये गणना सही होती है, क्यों हर दिन इससे भी अधिक खो जाते हैं समस्त संसार में। वे इस विषय में कुछ नहीं जानते। मैं समझता हूँ शास्त्री ने कहा, आप ये जानते हैं, शास्त्री ये क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना अवश्य है। उन्होंने यीशु से कहा, उसने कहा एलिया तो आ चुका, तुम नहीं जान पाए, उसने ठीक वही किया जो वचन ने कहा उसे होना था, समझे। इसी प्रकार से मनुष्य का पुत्र भी दुख उठाएगा अधीनता में। उन्होंने उसे नहीं पहचाना, यद्यपि वे सब कलीसिया में थे, सब ने जीवित होने का दावा किया। आपको वास्तव में तय किया गया, नया जन्म प्राप्त मसीह, परमेश्वर का सच्चा दास, परमेश्वर के उस वचन को सुनता है, वो हर एक नामधारी से होता हुआ बाहर आ जाएगा उस सच्ची उपजाऊ भूमि पर, वचन के द्वारा उपजाऊ भूमि पर। वो बस ये करेगा, मैं नहीं जानता वो कैसे करता है, परमेश्वर ने इसे होने के लिए ठहराया है। आपको आरंभ में धोखा दिया गया आपके पहले विवाह के द्वारा, अब आप जानते हैं कि सत्य क्या है। जैसा कि मैंने कहा, वो छोटा हुआ जब वो दूल्हे का शब्द सुनता है, वो उसके पास गया, अभिषिक्त किया हुआ, अंत के दिनों के लिए प्रमाणित किया हुआ परमेश्वर का वचन। नूह अपने समय का प्रमाणित वचन था, क्या आप ये विश्वास करते हैं? भाई उसका संदेश आज कार्य नहीं करेगा। मूसा अपने दिन का प्रमाणित वचन था, क्या आप ये विश्वास करते हैं? ये अब के लिए कार्य नहीं करेगा। यीशु था, यूहन्ना प्रमाणित वचन था, क्या विश्वास करते हैं? ये यीशु के दिनों में काम नहीं करेगा, निश्चय ही नहीं। नहीं श्रीमान, व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता यूहन्ना तक थे, तब से स्वर्ग का राज्य, प्रेरित, वे जिन्होंने बाइबिल तैयार की। यहाँ लूथर आता है सुधार में, उसके वचन जो उसकी कलीसिया में थे आज कार्य नहीं करेंगे। वैसली के नहीं करेंगे, पेंतिकोस्तल के नहीं करेंगे, उसने उन्हीं दिनों में कार्य किया, परंतु ये दूसरा दिन है, ये 7 मोहरों का खुलना है। मैं जानता हूँ ये आपको विचित्र सुन पड़ता है, परंतु परमेश्वर ने इसे सिद्धता से प्रमाणित किया, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं। ठीक सिद्धता से, मैं यहाँ स्थानीय मंडली को नहीं सुना रहा हूँ, मैं ये समस्त राष्ट्र के लोगों से बोल रहा हूँ, समझे। करिए जो आप चाहें, अब ध्यान दें, उसके दिन का अभिषिक्त वचन जिसके आप पहले से ठहराए हुए भाग हैं, आप तुरंत ही इसे पसंद करते हैं और जान गए। जब आपने सुना, आप तुरंत जान गए कि आप एक उकाब हैं। आप ये भी अनुभव किया कि आप आरंभ से ही नामधारी के चूजे नहीं हैं। आपको मालूम था कि वहाँ कुछ गलत था, वहाँ कुछ गलत था, ये ठीक बात है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप इसमें फंसे हुए थे आरंभ में। वो दूल्हे ने आपकी लज्जा को ले लिया और इसे भूल जाने वाले समुद्र में डाल दिया, वचन के जल से धोने के द्वारा, और जीवन का लहू, यही जो बाइबल ने कहा, आपका पहला पति जिससे आपका विवाह हुआ संसार था, अभिषिक्त दूल्हा जो आपके लिए पहले से ठहराया हुआ था, उसने आपको पानी के द्वारा धोया, कलीसिया के द्वारा। ये ठीक नहीं लगता क्या? ये आप इसे पांचांग में पा सकते हैं, परंतु परमेश्वर की बाइबल में नहीं, वचन के जल के द्वारा धोए गए, वचन में, समझे, द्वारा से। आप पूरी रीति से न्यायोचित खड़े हैं, जैसे कि आपने ये कभी नहीं किया आरंभ से। अब कलीसिया को मेरा ये संदेश है, जैसे कि आप, जैसे कि हम हवा से निकल गए हैं एक मिनट में, जैसे कि आप खड़े हैं, यदि आप परमेश्वर के वचन पर खड़े हैं और परमेश्वर के वचन के साथ हर आमीन, हर बिंदु, हर उपनाम, आप कहाँ खड़े हुए हैं, मैं आपको बताने का यत्न कर रहा हूँ, उस भूसे से अलग हो जाएं और इस गेहूं में चले जाएं, जहाँ आप पुत्र के समक्ष पक सकते हैं। मैं संगठित होने को आते हुए सुन सकता हूँ। आप पूरी रीति से न्यायोचित खड़े हैं, जैसे कि आपने पहले ही स्थान पर इसे कभी नहीं किया। हालेलुया, धन्यवाद देने के विषय में बात करते हैं, मुझे वास्तव में बहुत अच्छा लगता है, मैं इसके लिए अधिक धन्यवादित हूँ, बजाय किसी और चीज के जो मैं जानता हूँ। आप शुद्ध, गुणवान, पाप रहित, जीवित परमेश्वर के पुत्र की दुल्हन हैं। हर पुरुष और स्त्री जो परमेश्वर के आत्मा से जन्मा है और यीशु मसीह के लहू में धुला है और परमेश्वर के हर वचन का विश्वास करता है, ऐसे खड़ा है कि यद्यपि आपने कभी पहली बार पाप किया ही नहीं, आप सिद्ध हैं। यीशु मसीह का लहू, आप कैसे कर सकते हैं? यदि एक मनुष्य, यदि मुझे प्रातः मरना था, एक मनुष्य ने मेरा स्थान ले लिया, मैं उस पाप के लिए नहीं मर सकता, किसी ने मेरा स्थान ले लिया, और यीशु वो वचन ने मेरा स्थान ले लिया, वो मैं बन गया वो पापी, ताकि मैं वो हो सकूं। वचन, आमीन। मुझे इसे सच्चाई से पकड़ने दो, ना कि कलीसिया को। वो वचन, आमीन। ओ मसीह और उसकी कलीसिया का आत्मिक मिलन, जब देह वचन हो जाए और वचन देह हो जाए, प्रकट हो गया, प्रमाणित हो गया, यही जो बाइबल ने कहा इस दिन में घटित होगा। ये दिन प्रतिदिन घटित हो रहा है। क्यों ये वहाँ इतनी जल्दी इकट्ठा हो रहा है उन रेगिस्तानों में, और चीजें हो रही हैं, यहाँ तक कि मैं उन चीजों को नहीं रख सका। हम यीशु के आगमन के समीप हैं कि उसकी कलीसिया के साथ जुड़ जाएं, जहाँ वचन वचन हो जाए, पवित्र आत्मा की पुकार हृदयों को ढूंढ रही है। आप पूरी रीति से खड़े हुए हैं, आपने कभी भी पाप किया ही नहीं, यहाँ तक कि परमेश्वर जानता ही नहीं, ये भूल जाने वाले समुद्र में है, आपने ये कभी नहीं किया, आप पर दोष लगाया गया था दोष लगाने वाले के द्वारा, परंतु आरंभ से ही आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां होने के लिए ठहराए गए थे। आप धुले हुए खड़े हैं और आपकी पुरानी तलाक की पुस्तक हटा दी गई और ये मर गया, बिल्कुल अस्तित्व में है ही नहीं, यहाँ तक कि परमेश्वर के मस्तिष्क में भी नहीं। आप गुण संपन्न मसीह की दुल्हन हैं, मसीह के लहू में धुले हुए, मूल्यवान, गुणवान, पाप रहित, परमेश्वर का पुत्र, बिना मिलावट और पवित्रताई दुल्हन। वचन खड़ा है कि वो उसके अपने लहू जल के द्वारा धुला है, जो कि देह बना और प्रकट हुआ, ताकि वो आपको ले सके, जो कि पिता के हृदय में पहले से ठहराए हुए थे, वैसे ही जैसे वो था। वो परमेश्वर का महान गुण प्रेम कहलाया। आप जो भी हैं, आप परमेश्वर के दास, परमेश्वर आपसे जो भी करवाना चाहता है, आपका स्थान कहाँ है। परमेश्वर ने कलीसिया में कुछ प्रेरित भविष्यद्वक्ता शिक्षक रखवाले रखे हैं, उसने अपने गुण के द्वारा, अपने पहले से ठहराए जाने के द्वारा रखे हैं, और आप आरंभ से वहीं थे। आपका पहला विवाह निरस्तर हुआ था, यही था, आपने ये कभी किया ही नहीं, क्योंकि केवल एक ही चीज की जा सकती थी कि ये परमेश्वर स्वयं नीचे आएगा और परमेश्वर के पुत्र के समान होकर आपका स्थान लेगा, यीशु मसीह, और आपको जल के द्वारा धोया और वचन के जल के द्वारा धोया। वचन, नामधारी नहीं, वचन ने आपको धोया। परंतु यदि आप वचन के जल में खड़े नहीं होंगे तो आप कैसे धुलेंगे? आप भी वैसे ही दागी हैं जैसे हवा थी। ओ प्रिय मरते हुए मेमने, तेरा बहुमूल्य लहू कभी अपनी सामर्थ्य नहीं खोएगा, जब तक परमेश्वर की चुनी हुई कलीसिया बचा ली जाए कि और पाप ना करे। पाप क्या है? पाप अविश्वास है। अविश्वास किसमें? वचन में, परमेश्वर में। अविश्वास जो कि वचन है, शुद्ध, बिना मिलावट। ओ हेलुलिया, आकाश के लिए जाने को जल्द छोड़ रहे हैं, आमीन, तैयार खड़े हैं। सोचिए, आपके कपड़े जल के द्वारा धोए गए, लहू के बहते हुए वचन के द्वारा। वचन लहू हो गया, वचन आपके लिए लहू लुहान हुआ, और आप लहू बहते वचन के द्वारा धोए गए, वचन का बहता लहू। परमेश्वर का जीवन वचन में, और वचन आपके लिए लहू लुहान हुआ, ताकि आपको इस वेश्या की गंदगी से धोया जाए, और शुद्ध और पवित्र वचन के जल के धोने के द्वारा, और आपके मस्तिष्क और हृदय परमेश्वर और उसके वचन पर टिके रहें। अब आप कैसे जानते हैं कि ये सत्य है, जब परमेश्वर नीचे आया और इसे प्रमाणित और सिद्ध किया? आप कहते हैं, भाई मैंने इस प्रकार से विश्वास नहीं किया, उन्होंने यीशु के अनुसार विश्वास नहीं किया, परंतु परमेश्वर ने इसे सिद्ध किया। उन्होंने नूह के अनुसार विश्वास नहीं किया, उन्होंने मूसा के अनुसार विश्वास नहीं किया, इसके लिए वे बालाम का वचन लेने के इच्छुक थे। हम सब एक से हैं, इसलिए आओ एक साथ मिल जाएं, स्वयं को अलग करें, बाइबल ने कहा अविश्वास से। हालेलुया। अब ध्यान दें, आप केवल ये ही नहीं, परंतु आप आकाश में विवाह के लिए जा रहे हैं, और आप पहले से ठहराए विवाह के छल्ले को पहन रहे हैं, बिना योग्यता के अनुग्रह, एक विवाह की अंगूठी अनुग्रह की। आपकी अपनी कोई योग्यता नहीं, परमेश्वर ने ये स्वयं किया है, उसने आपको संसार की सृष्टि से पहले जाना, इसलिए उसने आपके ऊपर विवाह की पट्टी डाल दी, आपका नाम पुस्तक में लिख लिया। क्या ही धन्यवाद, हल्लुया, हमारे परमेश्वर की महिमा हो। अब बंद करते हुए मैं ये कह सकता हूँ, हम सब जानते हैं कि आधुनिक कलीसिया पेंटिकॉस्टल इस वर्तमान स्थिति में सारे नामधारी एक साथ मिलकर, मैं उन सबको एक गठर में जानता हूँ, क्योंकि वे हैं, स्मरण रखें, वो पहले जंगली पौधों के गठर बांधने जा रहा है कि उन्हें जलाए। वो गेहूं के सारे डंठलों को लेकर और सबको पहले जलाएगा, फिर वो लेता है, आकर अपने गेहूं को लेता है और इसे घर ले जाता है। ये सब बंडल में इकट्ठे हो रहे हैं, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, पेंटिकॉस्टल, सारे एक्यूमेनियल सभा में, बस वे सारे जलाए गए, समझे। हम सब जानते हैं कि आधुनिक कलीसिया अपनी इस वर्तमान स्थिति में, वर्तमान दशा में, किसी भी स्थिति में परमेश्वर के द्वारा आज के दिन दिए गए महान प्रधानकार को पूरा करे। कितने पेंटिकॉस्टल इस पर आमीन कह सकते हैं? ठीक है, समझे। ये इसमें हम वननेस, टूनेस, थ्रीनेस, ये वो विवाद, झगड़े इस पर, और एक ये और उनमें से प्रत्येक वचन का सामना करने से भयभीत होता है, ठीक परीक्षा के लिए, समझे। वे जानते हैं, आप उन्हें इस विषय में बताएं, वे कहते हैं मैं इसमें सहायता नहीं कर सकता, मैं इसका विश्वास नहीं कर सकता, मैं चिंता नहीं करता वो क्या करता है, मैं, समझे, दर्शाता है मामा और पापा आपके कैसे हैं। किसी दिन आप स्टेट प्रेसिपिटर हो सकते हैं, आप ये वो कुछ हो सकते हैं, अच्छा हो कि आप परमेश्वर के पुत्र हो जाएं। अब हम जानते हैं कि कलीसिया नहीं कर सकती, पेंटिकॉस्टल कलीसिया किसी विधि से नहीं, किसी विधि से नहीं इस अंत समय के संदेश का निर्वाह नहीं कर सकते। इस वर्तमान स्थिति में क्या हो सकता है? क्यों? एक या दो शब्दों पर सहमत भी नहीं हो सकते बाइबल में। आप ये कैसे करने जा रहे हैं? ये इसे नहीं कर सकता, ये इसे नहीं कर सकता, इसलिए आप देखिए नामधारी बाहर हैं। ये ठीक बात है, ये चुने हुए लोग होने जा रहे हैं जो इसके लिए चुने हुए हैं, समझे। अब जानिए, और ऐसे ही हम में से हर एक जन जानता है कि नामधारियों का समझ झुंड पेंटिकॉस्टल और सब मरे हुए हैं। ये फिर से जन्म लेना है संदेश के मसीही। ओ, आपका पहला पति मर गया, आप जानते हैं वो मरा हुआ है, परमेश्वर इसे मरने दे, ये समाप्त हो गया। और ये सारा वैज्ञानिक बुद्धिमान शिक्षण, बाइबल विद्यालय की कहलाने वाली वैज्ञानिक विधियां और चीजें नष्ट हो गयी। इसने क्या किया? अलग किया हुआ, यहाँ एकवाद और त्रिएकवाद, यहाँ और दोवाद, और वहाँ यहाँ वहाँ ऐसा गबड़, और स्वयं को पेंटिकॉस्टल कहलाते हैं। क्यों? उस दिन मैं एक युवक के पास गया, ठीक यहाँ अभी कुछ सुन रहा है, एक युवती, वो किसी कलीसिया विशेष से संबंधित थी। उसने कहा, मैंने कहा वे अलग हो गए, मैंने कहा क्या मामला है, कहा हमारा विश्वास भिन्न है। मैंने कहा ओ मुझे खेद है, क्या आप कैथोलिक हैं? उसने कहा नहीं। उसने मुझे जिस नामधारी कलीसिया थी बताया, एक पेंटिकॉस्टल। मैंने कहा आप क्या हैं? वो भी पेंटिकॉस्टल था, परंतु दूसरे नामधारी में। आप जानते हैं रोमन कैथोलिक कलीसिया आरंभ हुई पेंटिकॉस्टल, जितने जानते हैं ये सत्य है। ये अब जहाँ है, यहाँ आने के लिए इसने 2000 वर्ष लिए, पवित्र वचन का कुछ भी नहीं लेते, और नहीं कुछ नहीं। क्यों? अब से 20 वर्षों में पेंटिकॉस्टल उससे भी खराब हो जाएगा जो वे अब हैं। ये अब जिस दशा में है उसी में बढ़ता जा रहा है, क्यों, निश्चय ही, समझे। ये क्या है, ये क्या है? देखो उनके माता पिता कौन हैं? उनकी स्त्रियां अपने बाल कटाती हैं जो वे चाहती हैं, लगभग वही कर सकती हैं जब तक वे कलीसिया से हैं। ये सब आवश्यक है। ओ, कोई आश्चर्य नहीं परमेश्वर की निंदा बढ़ गई है। परमेश्वर ने ठीक आपकी आंखों के सामने रखा है, आप अपनी आंखें बंद करते हैं और इसे देखने में असमर्थ हैं। जी हाँ, सहानुभूति के कटोरे बंद कर देते हैं जब आप परमेश्वर का सच्चा वचन देखते हैं, और ये सात मोहरे प्रमाणित होते हुए और ऐसे ही सिद्ध और सारे राष्ट्रों और सब जगह आकाश में गवाही महान चिन्हों और चमत्कारों के द्वारा जिनकी उसने प्रतिज्ञा की कि वो करेगा, तब आप चुप हो जाते हैं और कहते हैं मैं नहीं जानता, मैं इसमें सहायता नहीं करता, समझे। ओ ये मर गया और ये नहीं जानता, पाप और अपराध, आप मर गए। ओ, हम सब जानते हैं कि कलीसिया इस दशा में, इस अंत के दिन में समाप्त नहीं हो सकता। ये कैसे मलाकी चार को भीतर ला सकता है, ये कैसे कर सकता है? वे ऐसी बात में विश्वास भी नहीं करते, इस पर कैसे विश्वास कर सकें? लूका 17:30 को लाएं, ये सारे और पवित्र वचन को लाया जा सके जिसकी प्रतिज्ञा अंत के दिनों के लिए है, ये नहीं हो सका, क्योंकि ये इसका इनकार करता है। जैसा कि ये लूत के दिनों में था, ऐसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में होगा। स्थिति को देखें, लूत उस दिन सादोम में था, आज के दिन कलीसिया की दशा को देखें। देखें चुने हुए अब्राहम का क्या हुआ, देखें लूत का क्या हुआ, और उनका जो सादोम में थे, बिली ग्राम को देखें, और ओरल रॉबर्ट को, वे जो उन नामधारियों के मध्य में है। अब्राहम चुनी हुई कलीसिया को देखें, बाहर खींची गई, देखें किस प्रकार का चिन्ह कि यीशु स्वयं अवतरित परमेश्वर वहां मानव देह में खड़ा हुआ है। आप कहते हैं वो एक दूत था, बाइबल ने कहा वो परमेश्वर था, प्रभु परमेश्वर एलोहिम, वहाँ मानव देह में खड़ा हुआ है, दर्शा रहा है कि वो अपनी कलीसिया को अंत के दिनों में ऐसा अभिषेक करेगा। ये परमेश्वर फिर से मनुष्य की देह में कार्य कर रहा होगा, जैसा ये सादोम के दिनों में था, ऐसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में होगा। उसी प्रकार की बात वे इसे ठीक पवित्र वचनों में देखते हैं। पढ़ें, पवित्र शास्त्र में ढूंढो जिसमें तुम सोचते हो कि तुम्हें अनंत जीवन मिलता है, और ये वे ही हैं जो इसकी गवाही देते हैं। देखा, समझे? इसलिए हम जानते हैं कि वे मर गए। परमेश्वर इसे अपने स्वयं के वैज्ञानिक शिक्षण योजना में मरने दे। सारे पेंतिकॉस्टल इस विषय में बातें किया करते थे, बाइबल विद्यालय से दूर भेजने के विषय में। जब बूढ़े भाई लॉयलेट वापस आए, वे यहाँ आसपास थे और वे कलीसिया में से भाग जाएंगे। परंतु अब ये महानतम बात है, मेरा पुत्र बाइबल विद्यालय में है, वो अपनी कब्र खोद रहा है। इसलिए अब आप सोचते हैं कि वे इसे ले सकते हैं? आज आप सोचते हैं कि मैं अज्ञानता का पक्ष लेने का यत्न कर रहा हूँ? मैं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बुद्धिमान युग जिसमें हम रह रहे हैं भिन्नता है, जहाँ कलीसिया विज्ञान से गर्भवती हुई और ये सब कहलाने वाले प्रकट हुए और आदि आदि। आप परमेश्वर को ना समझें। अच्छा, वे याजक लोग परमेश्वर को इतने अच्छी तरह समझ गए, वे जान गए कि मसीह किस प्रकार से आने वाला है, परंतु वो उससे इतनी भिन्न प्रकार से आया जो वे समझ रहे थे। ये वैज्ञानिक नहीं था। कैसे ये मनुष्य अवैध संतान होने के नाते, वो विद्यालय कहाँ गया, उसकी शिक्षा कहाँ से आई, उसने ये कहाँ से सीखा? क्यों तुम हमें सिखाने का यत्न करते हो? तू व्यभिचार में जन्मा है, देखा, ओ भले के वास्ते। देखिए, वही बात फिर दोहराई जा रही है। देखिए, ये फिर हो रहा है। उनकी धार्मिक विज्ञान उनके बाइबल विद्यालय के अनुसार जो कहा गया, इसी प्रकार से वे चाहते हैं, इसे इसी प्रकार से ही होना है, या ये नहीं है। परमेश्वर इन्हें मूर्ख बनाता है हर बार, ये सदा भिन्न आता है। ये नूह के समय में किया गया, मूसा के समय में, मसीह के समय में किया, यहुन्ना के समय किया गया, चेलों के समय, वेस्ली के समय हुआ, लूथर के समय हुआ, पेंतिकॉस्टल के समय हुआ, और ऐसा ही ये फिर है। ये अपना नमूना नहीं बदलता, सदा एक ही चीज आती है। केवल सुधारकों के द्वारा वे सातवें तक और प्रकाशित वाक्य 10 में कहा इस घड़ी में थे, बदल जाएगा, और ये हुआ। अब हम बंद कर रहे हैं ये कहते हुए बड़ा प्राधिकार पूरा हुआ, वे इसे कैसे कर सकते थे? हम जानते हैं कि वे मर गए। परमेश्वर इसे वैज्ञानिक युग में मरने दे इस सारे को, ताकि वो क्या करे, सात मोहरों के भेद को खोल सके, उस दुल्हन को जो नामधारी नहीं है। वे नामधारी उन सात मोहरों को कैसे स्वीकार कर सकते हैं, जबकि ये बिल्कुल विपरीत है। सर्प का वंश और वे सारी दूसरी बातें, वे सारी पूरी सात भेद जो उन्होंने सीखी विपरीत हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी बाइबल में से पुरानी शिक्षा ली है। और परमेश्वर की सात मोहरें जब वे वहाँ पहाड़ पर खुली थी, परमेश्वर मुझे यही प्रचार मंच पर मर जाने दे यदि ये सत्य नहीं है। और मैंने आपको इसके घटित होने के एक वर्ष और 6 महीने पहले बताया था कि उसने मुझसे क्या कहा, एरिजोना को जाओ और वहाँ रेगिस्तान में क्या घटित होगा। और आज रात्रि यहाँ लोग बैठे हुए हैं, वे ठीक वहाँ खड़े थे, और जब सात स्वर्गदूत नीचे आए तो वो वहाँ पर उपस्थित थे, और यहाँ तक कि पत्रिका लाइफ पत्रिका ने लेख संग्रहित किया, ये ठीक वहाँ वेदशाला में और आदि आदि। अब वे इतना भी नहीं जानते ये सब क्या है, और सब कुछ कहा गया, ओ कैलिफोर्निया का विनाश होने को भी अब आ रहा है, वे सारी दूसरी चीजें। और मैंने उन्हें कैसे बताया ये कितने दिनों में होगा, ये कैसे होगा, जहाँ ये बड़ा भूचाल अलास्का में हुआ, और ये समय के चिन्ह का आरंभ है, और क्या घटित हो। और बस शब्द शब्द जो कहा गया वे एक बार कभी भी असफल नहीं हुआ। आपने इसे कभी भी असफल होते नहीं देखा, और ये असफल नहीं हो सकता, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन है। और स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु ये असफल नहीं हो सकता, ये ठीक बात है। परमेश्वर को ये सात मोहरें खोलनी ही थी, नामधारी संस्था में नहीं। मैं सदा इसके विरोध में रहा हूँ, परंतु नामधारी कलीसिया से बाहर वो एक दुल्हन ले सकता है, ना कि नामधारी दुल्हन। वो ये नहीं कर सका, ये उसके अपने वचन के विरुद्ध है। उसने वहाँ वे सातों भेद खोले, ये दर्शाता है कि उन चीजों को लाता है जो संसार की सृष्टि से छिपी हुई थी, इन अंत के दिनों में प्रकट हो सकती है परमेश्वर के पुत्रों पर। वे लाए, लोगों के सामने लेकर आए, और वे उसे वहाँ देखते हैं। अब आप इस बिना नामधारी वाली दुल्हन, ओ वहाँ आपकी दो पुस्तकें हैं, उनमें से एक मेमने की जीवन की पुस्तक, आपका नाम उसमें पहले से ठहराया हुआ है। ये नहीं जा सकता, क्योंकि आप इसे किसी चीज से भी नहीं हटा सकते। देखिए, क्योंकि ये वहाँ होने के लिए पहले से ही अभिषिक्त है, परंतु जीवन की नियमित पुस्तक इसे किसी भी समय हटाया जा सकता है। समझे, आप प्रायश्चित नहीं करते हैं, जो भी है ये अलग है, क्योंकि आप न्याय में खड़े होने जा रहे हैं। दुल्हन तो न्याय में भी नहीं खड़ी होगी, स्वर्गारोहण में चली जाती है। जैसे कि मैं ये बंद करते हुए कहता हूँ, देर हो रही है, ये लगभग 9:30 हो रहे हैं और हम 9:30 बाहर निकलने जा रहे हैं। प्रभु ने चाहा तो अब वास्तव में श्रद्धा में होते हुए सुनिए एक बार, ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये समस्त राष्ट्र में जा रहा है। न्यूयॉर्क में अब 11:25 हो रहे हैं, वहाँ फिलाडेल्फिया और आसपास वहाँ होते हुए, वहाँ वे प्रिय संतजन बैठे हुए सुन रहे हैं, ठीक कलीसियाओं में चारों ओर, ऊपर नीचे मेक्सिको के आसपास, ऊपर कनाडा के आसपास, चारों ओर उत्तरी अमेरिका द्वीप में, 200 मील कहीं भी अधिकांश लोग बैठे सुन रहे हैं, हजारों हजार लोग सुन रहे हैं। कलीसिया, मेरा ये संदेश तुम्हारे लिए है, तुम ये तुम्हारा मिलाप है, आत्मिक मिलाप वचन के द्वारा, कि आप इन पुराने पतियों के लिए मर गए हैं, आप फिर से जन्मे हैं, उसे खोदने का यत्न न करें, वो मर गया। यदि आप नया जन्म प्राप्त मसीही हैं, तो वो छोटा जीवांश जो आपके लिए पहले से ठहराया गया है, ये वचन पर वचन आ रहा है, वचन पर वचन, वचन पर वचन, और मसीह के पूरे कद तक ला रहा है, ये ठीक बात है। इसलिए वो अपनी दुल्हन को लेने को आ सकता है। अब हम बस एक चीज के लिए तैयार हैं, वो प्रभु का आगमन है। वहाँ आपका नाम जीवन की पुस्तक में है, जीवन की पुस्तक परमेश्वर का वचन है, क्योंकि वचन परमेश्वर है, परमेश्वर ही केवल ऐसी चीज है जो जीवन है। इसलिए आपके नाम का प्रतिनिधित्व बाइबल में, बाइबल के वचन होने से पहले किया गया। और यदि आप यहाँ ये करने के लिए हैं, तो क्या ये वचन प्रमाणित नहीं करेगा? क्या कलीसिया स्वयं को प्रमाणित नहीं करेगी? क्या मलाकी 4 नहीं करेगा? और ये सारी चीजें सिद्धता सिद्धता स्वयं को प्रकट करती है और ये दर्शाती है कि ये यही है वो जो है। जब यीशु आता है, उसने कहा, यदि मैं उन कार्यों को ना करूं जिन्हें करने के लिए मेरे लिए प्रतिज्ञा की गई है, तो मेरा विश्वास मत करो। वो कौन से झुंडों का सदस्य बना? उसने कहा, वे सब तुम अपने पिता शैतान से हो और तुम उसके कामों को करते हो। समझे? समझे? कलीसिया, हम अंत के दिनों में हैं। मेरा ये आपके लिए धन्यवाद का संदेश, थैंक्स गिविंग का संदेश है। अब बंद करने से पहले एक बार मैं वहाँ ग्लेशियर नेशनल पार्क में था। हमने सारे दिन सुना कि वहाँ उनके पास एक झरना था, एक ग्लेशियर की आग जो उस रात्रि गिरने वाली थी। इसलिए लोग व्यस्त थे सारे दिन कि उस चीज को तैयार करें, क्योंकि वे उस रात्रि आग गिराने वाली थी। उन्होंने आग के झरने का द्रव्य डाला, जैसे पानी का एक बड़ा ग्लेशियर, परंतु ये मेघधनुष के समान लगभग दिखाई पड़ा। जब ये उस आग से बाहर आता है जो इस ग्लेशियर से गिर रही है, उस पार्क में चारों ओर पत्नी और मैं और बालक पूरे दिन इधर उधर घूमे। हम उस आग की प्रदर्शनी को देखने के लिए रुके। इसलिए हमसे प्रतिज्ञा थी कि हम इसे देखेंगे और हम इसकी फिर से गवाही देंगे। उन्होंने कहा, उनके पास ये गर्मी की ऋतु में होते हुए कभी था और आदि आदि। मैंने कहा, अच्छा, क्या हम इसे देखने पाएंगे? कहा, आज रात्रि हमारे पास प्रतिज्ञा है, हमसे प्रतिज्ञा की गई है। कहा, वे वहाँ ऊपर अब इसे तैयार कर रहे हैं। अंततः उस घटना के लिए सब तैयारी कर दी गई, यही जो अब घटित हो रहा है। सब कुछ उस घटना के लिए तैयार कर दिया गया। एक कलीसिया उसके नाम के लिए बाहर खींची गई, उसकी दुल्हन संसार से ली गई है। ये नामधारी और सारी दुनिया और गंदगी और संसार की चीजें, हर कोई, घटना तैयार कर दी गई है, हर कोई बाहर खड़ा है। उन्होंने कहा, अब ध्यान रखें वहाँ उस पहाड़ की चोटी पर। इसी प्रकार से ये सदा आता है, इसी प्रकार से इस बार आना है, इसी प्रकार से ये सदा आया है, न कि नामधारी कलीसियाओं के द्वारा। परमेश्वर ने कभी नामधारियों का प्रयोग कभी नहीं किया, कभी नहीं। सुधारक गए, उसे प्रभु का वचन मिलता है, और तब जब वो मर जाता है, वो इसमें से नामधारी बना लेते हैं। यही जो पेंतिकॉस्टल और सब ने किया। जब नए विषय मामले, हर चीज यही विधि है, इस प्रकार से चीजें बाहर आती हैं, एक नया शब्द जोड़ा गया, तब उन्होंने इससे नई कलीसिया बनाई, नामधारी बनाया, स्वयं को अलग कर लिया। इसे इसी प्रकार से होना था। अब आप हरा नहीं सकते, आप प्रकृति को हरा नहीं सकते। प्रकृति उसी क्रम में चलती है, सारे समय डंठल, पत्ती, झब्बा और आदि आदि, छिलका, तब गेहूँ। अब ध्यान दें, सब तैयार था, हर चीज प्रज्वलित और तैयार की गई थी, और हर कोई बाहर खड़ा था। मैंने अपना सिर उठा रखा था, मेरे हाथ मेरी पत्नी को घेरे थे, हम देख रहे थे, और बालक वहाँ खड़े थे, हम सब ऊपर देख रहे थे। इस प्रकार से ओ, ये कुछ था, क्योंकि हम इसकी आशा कर रहे थे, हमसे ये प्रतिज्ञा की गई थी। आमीन। वचन ने इसकी प्रतिज्ञा की है, ये देखो, प्रभु के बड़े और भयानक दिन के आने से पहले ये घटित हो जाएगा। मैं तुम्हारे पास एलिया भविष्यद्वक्ता को भेजूंगा, वो बालकों के हृदय को पूर्वजों की ओर फेरेगा। ये अंत के दिनों में घटित होगा, मैं ऊंचे से अपना आत्मा उंडेलूंगा, पहली और अंतिम वर्षा अंत के दिन में एक साथ आएगी। ये सारी प्रतिज्ञाएं पवित्र वचन में से होते हुए दी गई। हम ऊपर की ओर ताक रहे हैं, इस घड़ी में राष्ट्र में सच्ची दुल्हन को देखें, ऊपर देख रही है कलीसिया, वो आ रहा है इन्हीं किन्हीं दिनों में। वैसे ही निश्चित जैसे वो पहली बार आया था, वो फिर आ रहा है। हर चीज को तैयार कर लो, स्वयं को भूसे से अलग कर लो, पुत्र के सामने लेट जाओ, ऊपर देखते रहो, आशा में बने रहो। एकदम से हमने पहाड़ की चोटी से कुछ सुना, लाउड स्पीकर से एक आवाज आई, कहा सारी चीजें तैयार हैं। तब ये पुरुष जो मेरे बराबर में खड़ा हुआ था बोला, आग को गिरने दो, और यहाँ सारे पहाड़ पर आग का एक ग्लेशियर उंडलने लगा, चमक का प्रहार, देखने वाला दृश्य। भाई, इन दिनों में हम सब चीजें तैयार कर रहे हैं, आग गिरने वाली है, हम ऊपर जा रहे हैं, अब हम आग गिरने के समय के लिए तैयार हो जाएं। हम अंतिम दिनों में हैं, हम सब ये जानते हैं, और हम प्रभु के आगमन के लिए तैयार हैं। करने के लिए जो चीजें हैं कि हम स्वयं को सारे पापों से अलग कर लें, स्वयं को उन चीजों से अलग कर लें जो संसार का भाग है, संसार और उसकी वस्तुओं से प्रेम ना करें। कोई भी मनुष्य तुम्हें अपने मत्सार से धोखा ना देने पाए, आप ठीक परमेश्वर की प्रतिज्ञा में बने रहें, परमेश्वर का वचन और वो वचन, यदि वो इस दिन का वचन है, परमेश्वर ऐसा प्रमाणित करता है, यदि वो नहीं करता है तो ये इस दिन का वचन नहीं है। वो वचन जो पेंतिकौसल के दिन उतरा, आज के दिन कार्य नहीं करेगा, वो पेंतिकॉस्ट के लिए था, ये दुल्हन के लिए है, घर जाने वाली दुल्हन के लिए, हमारे पास कुछ भिन्न है। पेंतिकॉस्टलों ने इसका प्रतिनिधित्व किया, फिर से हम दुल्हन के युग में हैं, इससे अधिक नहीं। नू का वचन मूसा के दिनों में कार्य नहीं करेगा, मूसा की व्यवस्था अब और पौलुस के समय में कार्य नहीं करेगी। उसने उन्हें बताने का यत्न किया, तुम उसके लिए मर चुके हो और तुम उसको नहीं ले सकते। कलीसिया, तुम जिनसे मैं आज समस्त राष्ट्र में बात कर रहा हूँ, यदि तुमने स्वयं को नामधारी और सारी गंदगी से अलग कर लिया है, और संसार की चीजों से और सब चीजों से जो तुम्हें मनुष्य की बनाई हुई मत्सार में और आज्ञाओं और इस प्रकार की चीजों में रखती हैं, तो तुम स्वयं को अलग कर लो, ऊपर देखो, तैयार हो जाओ, आग इन्हीं किन्हीं दिनों में गिरने वाली है, परमेश्वर आने वाला है, उसे आने दो। और एक देखने वाला दृश्य, क्या आप तैयार होंगे जब वो आता है? क्या आप तैयार होंगे जब वो आता है? क्या आप उसके साथ जाने को तैयार होंगे जब वो आता है? अलौकिक दुल्हन का गुप्त स्वर्गारोहण, वो बना दी जाएगी, मरणहार से अमरणहार बदल गए, एक क्षण में पलक झपकते ही हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे, जो सोए हुए हैं उनसे आगे ना बढ़ेंगे। उस दिन युद्ध विराम के दिन मैं वहाँ टूसान में खड़ा हुआ था, मेरा छोटा लड़का परेड देखना चाहता था, मैं अध्ययन कर रहा था और करने के लिए समय नहीं था, मेरे पास बहुत सी बीमारों के लिए टेलीफोन बुलाहटें आदि थी, इसलिए उसने कहा, पिताजी वे मुझे नहीं ले जाएंगे, उसने कहा मुझे ले चलो, मैंने कहा ठीक है भाई सैमसन, मैं सोचता हूँ वो यहाँ पर है, और उनका छोटा लड़का जाना चाहता था, इसलिए मैंने उन्हें कार में डाला और भागा। मैं वहाँ कोने में खड़े हुए देख रहा, और थोड़ी देर बाद मैंने सुना वहाँ पीछे दूर एक जत्था बम बम ढोल बजाता हुआ आ रहा था। मैं वहाँ खड़ा था, मैंने सोचा, अच्छा ये बेचारे लोग, इन्होंने वास्तव में फौज के विषय में ये सारी पुस्तकें पढ़ी हैं, वे वास्तव में इसे पसंद करेंगे। मैंने ध्यान दिया, पहले पुराने युद्ध के टैंक पहले आ रहे हैं, वहाँ वे आए इस प्रकार से, वे छोटे लोग, फिर वहाँ अगले आए, इसके बाद तब इसके बाद अगले बड़े नए टैंक थे, दूसरे विश्व युद्ध के बड़े शेरमॉन टैंक, उनकी नाले उन पर टूटी हुई थी, तब फिर अगले और कुछ देर बाद सोने के सितारों वाली माताएं, और फिर कुछ देर बाद 12 तजुर्बेकार योद्धा जो समस्त एरिजोना राज्य में बचे थे आए, पहले विश्व युद्ध के पुराने सैनिक, इसके बाद एक बेड़ा, अज्ञात सिपाही, छोटी सफेद क्रूज, वहाँ एक नाविक समुद्री और एक सिपाही, एक रक्षक खड़ा हुआ है, उस पानी के पोत पर एक छोटा विभाजन था, उसकी दूसरी ओर बूढ़ी सफेद बालों वाली माँ, उसके सोने के सितारे का बिल्ला लगा था, एक छोटी प्यारी पत्नी से रो रही थी, उसका पति मर गया था, एक छोटा आम लड़का, उसका सिर एक और घुमा हुआ था, उसके पिता मर गए थे। और फिर इसके बाद फिर और आए, फिर नई सेना, और मैं वहाँ खड़ा था, देखने का क्या ही दृश्य, परंतु कितना दुख। मैंने सोचा, ओ परमेश्वर, इन्हीं किन्हीं दिनों में मैं एक और दृश्य देखने जा रहा हूँ, एक पुनरुत्थान का दिन आएगा जो कि पहले अंतिम होंगे, और वे जो अंतिम हैं पहले होंगे, बूढ़े भविष्यद्वक्ता लोग बढ़ते हुए आएंगे पहले, और वे उस जुलूस को जाते हुए देखते हैं, ऊपर हवा में जा रहे हैं, हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उन सोयों से आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, जो मसीह में मरे हैं पहले जी उठेंगे, हम उनके साथ पंक्ति में होंगे, जा रहे होंगे, हालेलुया। उन सब बीते युगों में होते हुए लूथर का युग, वेस्ली का, मेथोडिस्ट, प्रेस्बिटेरियन और नीचे अंतिम युग, जिन्होंने अपने युग में वचन ग्रहण किया, परमेश्वर आपको आशीष दे, सारी चीजें तैयार कर लो और आग गिरेगी। आइए एक क्षण के लिए हम अपने सिरों को झुकाएं। मुझे आश्चर्य है आज रात्रि दिखाई देने वाली भक्त मंडली में, जबकि मैंने आपको यहाँ रोका हुआ है 9:30 तक, क्या कोई यहाँ है? क्या यहाँ दर्जन है? कितने हैं यहाँ? और कहते हैं, भाई ब्रणम, मैं स्वयं से लज्जित हूँ जिस प्रकार से मैंने जीवन बिताया। मैंने बहुत सारे नामधारियों और मनुष्यों की सेवा की है। मैं जानता हूँ कि मैं परमेश्वर के वचन के साथ नहीं हूँ। मैं आपसे कहने जा रहा हूँ कि मेरे लिए प्रार्थना करें। भाई ब्रणम अपना हाथ उठाएं, परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे, वहाँ ऊपर बालकनी में और चारों ओर देखें, परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं जानता हूँ अब शर्मिंदा ना हो, अब ना हो, और वहाँ बाहर समस्त राष्ट्र में न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया, कनाडा से मेक्सिको, आप लोग जो यहाँ जमा हुए हैं, वे कलीसियाएं जहाँ वे निष्कपट छोटे झुंड जो इस संदेश का अपने पूरे हृदयों से विश्वास करते हैं, वे बाहर आ गए हैं, उस महाकष्टों से बाहर आ गए हैं, उन नामधारियों से होकर आए हैं, वे जीवन के जीवांश हैं। क्या आज रात्रि आप छोटे उकाब के समान उतावलापन अनुभव करते हैं? क्या आपने जो सुना उससे थोड़ा भिन्न सुनते हैं, परंतु फिर भी अपने हृदय में आप जानते हैं कि ये सत्य है? आप वहाँ भीतर वहाँ कहीं एक पास्टर खड़ा है, आपने अपना हाथ ऊपर किया हुआ है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। ये बातें कोने में नहीं हुई मित्रों, स्मरण रहे, सकेत है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग, वहाँ थोड़े ही होंगे जो इसे पाएंगे। उस भीड़ के साथ ना जाएं जो वहाँ जा रही है मित्र, वो लुदिकिया कलीसिया युग है। ये ऊपर नीचे कूद सकता था, संगीत पर नाच गुनगुना, ये नहीं कहा कि वे बर्फ के समान अब ठंडा है, इसने कहा ये गुनगुना था, ये पेंटिकॉस्टल है। और ये नहीं जानते कि ये बेचारे हैं, अभागे, अंधे। किसके लिए अंधे? वचन प्रकट होते हुए वचन के लिए अंधे, क्योंकि ये कभी उनकी संस्थाओं में नहीं आया, वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते। और सेवक गणों वहाँ ट्यूसान में, आज रात्रि मैं आपको इसके लिए उत्तरदायी नहीं ठहराता हूँ, परमेश्वर ठहराता है। मैं वहाँ 3 वर्षों से था, मैंने आपको बताया मैं कलीसिया आरंभ नहीं करूँगा, मैंने नहीं किया, भाई पेरीग्रीन ने इसे आरंभ किया। मैं वहाँ 3 वर्षों से था और आपने एक बार भी मुझे अपने प्रचार मंच पर निमंत्रण नहीं दिया। मैं ट्यूसान में 3 वर्ष रहा, परमेश्वर मुझे इन्हीं दिनों में रेगिस्तान से लेगा और इस संदेश को जीवित रहना है। मैंने आपको इसमें लाने के लिए अपना पूरा यत्न किया, मैं जानता हूँ कारण जो हुआ, आप सुनते हैं, केवल इसी कारण आपने ये किया, आपका नामधारी आपको लात मारकर बाहर कर देगा। और आप जानते हैं, आपने से बहुत सो से मैंने बातें की हैं वहाँ फिरोज के रेस्टोरेंट पर, और आप जानते हैं कि ये सत्य है, आपके लिए लज्जा की बात है, इससे बाहर आएं, वहाँ से बाहर आएं। भाई यदि आप में कोई जीवन है तो आप छोटे उकाब के समान होंगे, मैंने अभी अभी कहा आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे। स्मरण रहे, इन्हीं दिनों में आप इसे अंतिम बार सुनने जा रहे हैं, हम अब बंद करते हैं, क्या आप आज रात्रि नहीं आएंगे? प्रिय परमेश्वर, हमने श्रद्धा से तय कर दिया है कि ये वास्तव में धन्यवाद देने का दिन है। प्रभु प्रभु, मैं आभारी हूँ कि इस दिन में जीवित रहूँ, ये महानतम दिन है। पौलुस प्रेरित इस दिन को देखने की आशा करता था, पुराने महान पुरुष इसे देखने की आशा करते थे, उन्होंने इस दिन को देखा, अब्राहम ने इस दिन को देखा, उस नगर को खोजा जिसको रचने बनाने वाला परमेश्वर था, ये ठीक आज रात्रि हमारे ऊपर है। यूहन्ना ने परमेश्वर के आत्मा को स्वर्ग से उतरते देखा, गवाही दी जानते हुए कि ये परमेश्वर का पुत्र था, और अब सोचें वो अपनी दुल्हन चुन रहा है। प्रिय परमेश्वर, समस्त राष्ट्र में हर कहीं उनके हृदयों से बात करें, केवल आप ही हैं कि उनके हृदयों को बदल सकते हैं। यदि वे वहाँ आरंभ से बीज नहीं थे, प्रभु वे इसे कभी नहीं देखेंगे, वे बस अंधा अंधे को मार्ग दिखाएगा, वे गढ़े में गिरेंगे, जैसे कि कुछ भी निश्चित हो, क्योंकि आपका वचन कहता है वे करेंगे। अब पिता, ये होते हुए हम समस्त राष्ट्र में देखते हैं, समस्त संसार, अफ्रीका में दर्जनों दर्जनों, दक्षिणी अफ्रीका, मोजाम्बिक, सारे राष्ट्रों में छोटी छोटी भक्त मंडलियां ये टेप ले रही हैं, और इस प्रकार के ये टेप 20-21 विभिन्न राष्ट्रों में जाएंगे। उन्होंने इसे देखना आरंभ कर दिया है और सैकड़ों सैकड़ों बाहर आ गए। प्रभु बहुत सो को नहीं लेगा, तब जब अंतिम सदस्य देह में ले लिया जाएगा, मसीह आ जाएगा। प्रभु परमेश्वर, मैं आज रात्रि दुल्हन से पूछ रहा हूँ, एक जो मैं अनुभव करता हूँ बाहर आकर प्रतीक्षा कर रहा है, होने पाए ये स्वयं को संसार की हर चीज से अलग कर ले, पुत्र की ज्योति की गर्म उपस्थिति में वे रहें, परमेश्वर के पुत्र उसके वचन में ना रहे हैं, उसके प्रेम में प्रिय परमेश्वर इसे प्रदान करें। होने पाए ये लोग जो यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, जिन्होंने अपने हाथ उठाए हुए हैं आज रात्रि इस महान आराधनालय में, यद्यपि उनमें दर्जनों हैं, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि इन लोगों में नया जीवन आएगा। समस्त राष्ट्र के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और समस्त संसार के लिए भी, जहाँ ये टेप बजाएं, कि वे भी धन्यवाद देने का संदेश ग्रहण करें, इशारों और बातों से जाने की बिखरा दिया गया है कि उन्हें क्या करना चाहिए। पिता, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि इसे प्रदान करें, इन्हें आशीषित करें, ये आपके हैं। मैं जानता हूं कि अब ये चलन है पिता कि हम लोगों से वेदी पर आने को पूछते हैं। प्रिय परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि हर मिशन में चारों ओर समस्त संसार में कि वे वेदी पर आएंगे, काले, गोरे, पीले, भूरे, जहां कहीं वे हैं, धनी, निर्धन, विभन, भिखारी, वे जो भी हैं, नामधारी लोग, वे जो स्वयं को विधि वाले और अपने में सीमित, ओ परमेश्वर, नंगे, बेचारे, अभागे, अंधे, और ये भी नहीं जानते। आपने कहा ये इसी प्रकार से होगा और ये वैसे ही है। इसलिए पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हर बीज को जो आज रात्रि बुलाएंगे और समस्त संसार में हर कहीं कि ये गिर जाए, ये छोटे उकाब को पकड़ ले जो अपने प्रभु की आवाज को पहचानता है, प्रभु इसे प्रदान करें। मैं इन्हें आपको यीशु नाम में समर्पित करता हूँ, आमीन। अब अपने झुके हुए सिरों के साथ यहाँ इस दिखने वाली मंडली में कुछ यहाँ होंगे जो बचाए नहीं गए, यहाँ तक कि अपने हृदय भी परमेश्वर को नहीं दिए। क्या आप नहीं सोचते कि आपको जो यीशु ने आपके लिए किया है धन्यवादित होना चाहिए? ये सोचते हुए कि आप पापी हैं, कि आप परमेश्वर से अपरिचित, और फिर भी कुछ आपके हृदय पर खटखटा रहा है, आप कैसे जानते हैं? परंतु आप क्या हैं? उन छोटे उकाबों में से एक। आप बेचारे और रहेंगे जब तक आप इसको समर्पित नहीं होते। क्यों नहीं इसको महान धन्यवाद बना दें जो आपने कभी किया, जब आप यीशु मसीह को अपना बचाने वाला स्वीकार करते हैं। क्या आप यहाँ आकर वेदी के पास खड़े होंगे? यदि आप आएंगे तो मैं आपके साथ प्रार्थना करूंगा। कोई भी पापी पुरुष या महिला, लड़का या लड़की, कलीसियाई सदस्य या बिना सदस्य, कलीसियाई की सदस्यता आपको मसीही नहीं बनाता। वेदी खुली है, क्या आप आएंगे? कोई भी पापी जो आना चाहेगा, यीशु मसीह को ग्रहण करता है, वास्तव में छोड़ना चाहेगा। आप में से कुछ नामधारी वाले जो उस मुर्गी के खाने को छोड़ना चाहेंगे, ये कहने का तुम इससे हो और ये ठीक है, आप वास्तव में जानना चाहते हैं कि पवित्र आत्मा का वास्तविक बपतिस्मा क्या है, आइए ढूंढें। वेदी खुली है, हम तैयार हैं। सीधे ऊपर आए, अपने अपने स्थान से ऊपर आए और यहाँ वेदी पर घुटने टिका लें। ये भाई जो अभी आया है, वो परमेश्वर धन्यवाद देना। मैं आपका बहुत ही धन्यवादित हूँ कि आपने सारे जीवन, मैंने ये जाना है कि मैं प्रभु वहाँ कुछ है, मैं कभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। मैंने यत्न किया, मैंने सोचा अगले वर्ष मैं इसे करूँगा, अगले सप्ताह मैं इसे करूँगा, अगली बार मैंने वेदी की पुकार सुनी, किसी दिन मैं करूँगा, मैंने ये छोड़ दिया और छोड़ दिया। परंतु प्रभु, मैं जानता हूँ कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ है, मैं सदा ये विश्वास करूँगा कि कुछ भिन्न है। और अब प्रभु, आज रात्रि मैं इस तैयारी के लिए धन्यवादित हूँ जो कि परमेश्वर के पुत्र के द्वारा की गई, कि मेरा पाप, जो वास्तव में मेरा अविश्वास, मुझसे धो दिया जाएगा। आज रात्रि मैं आ रहा हूँ और धन्यवाद को स्वीकार करने के लिए घुटने टेकता हूँ, और वे आशीषें जो यीशु मसीह ने मेरे लिए की, वो मेरे लिए कैलवरी पे मरा। क्या आप आएंगे? अब यहाँ वेदी के चारों ओर लोग घुटने टेके हुए हैं। आप उठकर क्यों नहीं आते? आपने ये करना चाहा, आपने इसका यत्न किया है। भाई लाइल पामर के विषय में सोचें। हमारा अच्छा बहुमूल्य भाई वो आंगन में बैठा था, इसलिए मैं समझता हूँ, अपनी छोटी लड़की को देख रहा था, बाहर क्रिकेट या कुछ खेल रही थी और वो कुर्सी पर बैठा था, और इसके पहले वो थोड़ा भी हिले मर गया था। आप नहीं जानते कि आप कब छोड़ने जा रहे हैं, ये अब भी आज रात्रि, तो फिर क्यों नहीं आकर आज तय कर लें? अब लोगों आओ, क्या आप अनुभव कर सकते हैं कि कोई चीज आप पर खिंचाव डाल रही है? मैं जानता हूं कि यहां बहुत से हैं जिनको ठीक यहां वेदी पर होना चाहिए, पर बस ये 6 या 7 लोग यहां नहीं जो यहां बैठे हैं। अब यदि आप मेरा विश्वास करते हैं और यहां मंच पर ध्यान देते हैं, चीजें घटित हो रही हैं। अब आप मेरा विश्वास करें, एक दिन मेरी आवाज शांत हो जाएगी, इसे फिर आप और नहीं सुनेंगे। आप इच्छा कर सकते हैं कि आप आ जाते। आप कहते हैं, परंतु भाई बर्नम में कलीसिया का सदस्य था, इससे आपको कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप क्या थे। ऐसे ही निकोदीमस भी कलीसिया का सदस्य था, ऐसे ही यहुन्ना, पतरस, याकूब, पौलुस और बाकी वे सब कलीसिया के सदस्य थे। पौलुस तब तक कलीसिया का था जब तक एक रात्रि कुछ घटित नहीं हुआ, या एक दिन ये था, और वो आया तब वो कलीसिया का बदला हुआ सदस्य था, एक परमेश्वर का पुत्र, क्या आप नहीं आएंगे? ओ, वो प्रशिक्षित था, वो तो बुद्धिमान था, वो जानता था कि वो प्रशिक्षित था, महान प्रशिक्षण विद्यालय से वहाँ गैमलियल था, राष्ट्र के शानदार शिक्षकों में से एक, परंतु वो जान गया उसे किसी चीज की आवश्यकता थी। क्या आप नहीं आएंगे? एक बार और मैं आपसे कहता हूँ, कहाँ, यहाँ या समस्त राष्ट्र में, आप जहाँ कहीं भी हैं, मैं आपसे कहता हूँ, आप जहाँ भी हैं, जिस भी झुंड में हैं आप, इस धन्यवाद देने की घड़ी में स्मरण रहे, यहाँ मेरा ये वाणी टेप हो रही है, केवल यही नहीं परंतु स्वर्ग में भी। आप जानते हैं कि ये वैज्ञानिक रीति से सिद्ध हो गया है कि हर हलचल जो आप करते हैं वो लिपिबद्ध या रिकॉर्ड है। वे ये सिद्ध करते हैं, स्मरण रखें, टेलीविजन ये सिद्ध करता है। टेलीविजन चित्र नहीं बनाता, आप चित्र हैं। ये तो उसको जो आप कर रहे हैं उसको उस मार्ग से स्थानांतर करता है। आप वहाँ हैं, जो भी हैं, समझे। जब आप अपनी उंगली हिलाते हैं वो हिलना समस्त संसार में जाता है। हर बार जो आप एक वेशभूषा पहनते हैं आप सारे संसार में दिखते हैं। ये लिपिबद्ध है। हर विचार जो आपके मस्तिष्क में होता है लिपिबद्ध है। और किसी दिन ये रिकॉर्ड दिखाया जाएगा, ये एल्बम में रखा जा रहा है और न्याय पर ये वापस आने वाला है। वहाँ आप कटे बालों के साथ खड़े हैं, मसीह होने का दावा कर रहे हैं। वहाँ आप अपने मस्तिष्क में वचन विरोधी विचारों के साथ खड़े हैं और ये ठीक आपके मस्तिष्क में है, आप इसे छिपा नहीं सकते। स्मरण रहे, टेलीविजन विज्ञान भी जानते हैं कि ये सत्य है। आप ठीक यहाँ खड़े हैं और जानते हुए कि आपको यहाँ होना चाहिए। स्मरण करें, जब ये लिपिबद्ध किया गया है, न्याय के दिन वही विचार जो आपके मस्तिष्क में ठीक फिर वापस आएंगे, ये लिपिबद्ध होंगे। समस्त संसार इसे होते हुए देखेगा। क्यों नहीं संसार, न्याय के दिन आपकी ओर देख रहा है। सारे सरदूत वहाँ हैं। यदि तुम मुझसे यहाँ शर्माओगे जबकि आपका चित्र बन रहा है, उस न्याय के दिन मैं भी तुमसे शर्माऊंगा, क्योंकि मैंने अपने वचन को अभिषिक्त किया और आपके पास भेजा है। तुम इसका विश्वास नहीं करोगे, तुम स्वयं को किसी चीज के पीछे छिपाओगे। ओ, आप कहते हैं मैं बहुत अच्छा हूँ, मैंने ये किया है, मैं आत्मा में नाचा हूँ, मैंने अन्य भाषा बोली है, ऐसे ही मूर्ति पूजकों ने। मैं चिल्लाया हूँ, ऐसे ही मूर्ति पूजक भी। तो आप वचन से कैसे पीठ मोड़ सकते हैं? आपको अपनी देह के सदस्य के समान रखता है, क्यों नहीं? ओ छोटे उकाब, अब आ जाओ। ओ क्यों नहीं आता? प्रभु मैं धन्यवादित हूँ, मैं बहुत धन्यवादित हूँ। आपको धन्यवाद प्रभु, प्राकृतिक भोजन के लिए नहीं, फिर भी वो है, परंतु प्रभु अंत समय यहाँ पर मैं इस आत्मिक भोजन के लिए धन्यवादित हूँ। प्रभु सात मोहरों के आत्मिक भोजन के खोलने की प्रतिज्ञा की गई थी। आप कहते हैं ये कुछ भिन्न होगा, नहीं नहीं, आप एक शब्द नहीं मिला सकते और निकाल, ये पहले ही इसमें है, बस छिपा है, ये मोहर बंद है। कितने ये समझते हैं, आमीन कहें। ये पहले ही लिखा है, आप इसमें एक भी वचन नहीं मिला सकते, ये तो अंतिम दिन में प्रकट होना है। क्या आप नहीं आएंगे? मित्र अब आ जाओ, यदि आप समझ नहीं सकते आइए, घुटने टेकिए, इस विषय में उससे बातें करें। यदि मैं इसे आपको स्पष्ट नहीं कर सकता तो वो करेगा, क्योंकि वो तो हर संदेह को दूर करने वाला है। स्मरण रहे, इसको भी लिपिबद्ध किया जा रहा है, केवल इसी टेप पर ही नहीं परंतु परमेश्वर के महान टेप पर। आप में से प्रत्येक हलचल, जब आप अपना सर झुकाते हैं, अपना हृदय झुकाए, आपके मस्तिष्क में कौन से विचार हैं, स्मरण रखें, ये इसी समय महिमा में रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और रिकॉर्डर न्याय के दिन चलाया जाएगा। आपका क्या निर्णय है? ओ आप इसे कैसे बदलना चाहेंगे उस दिन? मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ, क्योंकि वेदी के चारों ओर बहुत से हैं, समझे। संभव है उनमें से एक, यदि मैं थोड़ी देर और ठहरूं, हो सकता है कोई और भी हो, कहीं न्यूयॉर्क में हो, हो सकता है कोई फिलाडेल्फिया में हो, वहाँ कैलिफोर्निया में, एरिजोना, कहीं कोई और आ रहा हो। सेवक आप जहाँ भी हों, अब वेदी की बुलाहट ना करें। हो सकता है हम दूसरा धन्यवाद दिवस ना देखें, यह अंतिम हो सकता है, और आज रात्रि रिकॉर्डर्स बंद किए जाएं अंतिम बार, इन्हीं किन्हीं दिनों में टेप समाप्त हो जाएगा। अभिलेख कट कर परमेश्वर की एल्बम में होगा, तब ये चलाया जाएगा। अब आपके क्या विचार हैं? मत कहिए आपको कोई अंतर मालूम नहीं पड़ा, आपको पड़ा है। परंतु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं आ सकता सिवाय कि मेरा पिता उसे न खींच ले, और सब जो पिता ने मुझे दिया है वे आएंगे उसके पास। आओ, मैं विश्वास करता यदि मैं कहीं पर बैठा हुआ होता और थोड़ा सोचता, निश्चय ही जितने यत्न से हो सकता है मैं करता। जी हाँ, ओह क्यों नहीं, क्यों? क्या आप समाप्त हो गए? आप निश्चित हैं कि आप उसके आत्मा को शोकित नहीं कर रहे हैं? आइए तो हम अपने सिरों को झुकाए रखें। आप निश्चित हैं आपने उसके आत्मा को शोकित नहीं किया? आप निश्चित हैं आपने वही किया जो उसने आपसे करने को कहा? आप पक्के हैं? स्मरण रहे, हो सकता है आपको फिर कभी अवसर ना मिले। आज रात्रि अभिलेख समाप्त हो जाए, ये सबके लिए हो सकता है। यह आपके लिए अंतिम टेप हो सकता है। क्या आप निश्चित हैं कि आप अब तैयार हैं? यदि हैं, मैं ये आपके हाथों में छोड़ता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अब जबकि गायन मंडली धीरे धीरे गा रही है, मैं इनके लिए जो नीचे हैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। मैं एक प्रकार का बहुत पुराना मसीही हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने ही बचाना है। मैं विश्वास करता हूँ कि वचन परमेश्वर को ही बोना है। मैं प्रभु, बाइबल यशायाह में कहती है, मुझ प्रभु ने ही इसे बोया है, मैं इसे दिन और रात सींचूंगा, कोई इसे मेरे हाथ से ना ले। इसके पहले मैं किसी से कहूं कि इन लोगों के साथ वेदी के आसपास आ जाएं, मैं स्वयं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आइए अब हम प्रार्थना के लिए सिर झुकाएं। प्रभु यीशु, मैंने अभी अभी आपके वचन का उल्लेख किया है कि आपके नबी ने कहा मुझ प्रभु ने इसे लगाया है, क्यों? निश्चय ही आपने इसे मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखा है, इस संसार के रचने से पहले। मुझ प्रभु ने इसे लगाया है और मैं इसे दिन और रात सींचूंगा, कहीं कोई इसे मेरे हाथ से ना ले ले। संभवतः ये प्रभु इसने बहुत सी वेदी की बुलाहटें सुनी हो, परंतु आप अब भी इसे सींच रहे हैं। प्रभु, आज रात्रि ये यहाँ पर है, होने पाए पिता आज रात्रि संसार की सारी चीजों से स्वतंत्र हो जाएं, सारे पाप और परेशानियां जो इनके हृदय में हैं, और होश में, श्रद्धा में, इनके हृदय में आपके वचन के लिए स्वतंत्र हो जाएं। ठीक इसी समय कहें, प्रभु यीशु, मेरे हृदय में मैंने सदा ये विश्वास किया है कि मेरे लिए कुछ है जिसे कि मैंने अभी तक नहीं पाया। यद्यपि मैंने यत्न किया है, जैसे कि प्रकट में आज रात्रि मुर्गी का अनुकरण करना, परंतु मुझे कुछ विचित्र सा प्रतीत होता है कि ये ठीक नहीं मालूम पड़ता। फिर आज रात्रि मैं अनुभव करता हूँ कि अब मैं जीवित वचन की बाहों में समीप आ रहा हूँ। मैं अपनी सही मस्तिष्क में श्रद्धा के साथ आ रहा हूँ। मैं यहाँ वेदी पर बैठ गया हूँ। प्रभु, मैं उद्धार चाहता हूँ बहुत ही। मैं बहुत भूखा हूँ प्रभु। मैं आपको चाहता हूँ आज रात्रि मुझे अपनी बाहों में पकड़ लें, किसी उत्तेजना में नहीं परंतु प्रेम की आत्मा में। प्रिय परमेश्वर, मुझे अपनी बाहों में ले लें। मैं आपका बालक हूँ। मैं अनुभव करता हूँ कि मैं वो उकाब हूँ जिसके विषय में वे बात कर रहे थे। प्रभु, मुझे पकड़ लें। मैं कूद रहा हूँ। मैं अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया हूँ और यहाँ पर घुटने टेके हूँ। प्रभु, मुझे पकड़ लें। मैं कूद रहा हूँ। मुझे अपने पंखों पर ले लें। इस संसार की चीजों से दूर, मुझे संसार की गंदगी से दूर उड़ जाने दें, मेरी बुरी आदतों से, मेरे नामधारी रिवाजों से। प्रिय परमेश्वर, केवल आपके पास आ जाऊं। पवित्र आत्मा मुझ में उंडेला जाए अपने सारे संदेहों की क्षमा के लिए। होने पाए आज रात्रि मैं आपका बालक हो जाऊं, ताजगी, जन्म, और आज रात्रि एक नई सृष्टि मुझे पकड़ ले, मुझे दूर ले जाए, मुर्गी की आवाज से दूर, मुझे उकाब के घोंसले में ले जाए, जहाँ परमेश्वर के वचन से मेरा पालन पोषण हो, जब तक मैं उड़ने योग्य ना हो जाऊं। परमेश्वर, इसे प्रदान करें, इन्हें ले लें, ये आपके हैं। मेरी ये प्रार्थना निष्कपट है, मरते हुए लोगों पर प्रार्थना कर रहा हूं। पिता, इसे ग्रहण करें। मैं ये प्रार्थना उनके बदले चढ़ाता हूं। परमेश्वर की महिमा के लिए मैं इसे मांगता हूं। अब अपने झुके हुए सिरों के साथ, मुझे आश्चर्य है अब वेदी के चारों ओर ये आप हैं जो यहाँ घुटने टिकाए हैं। आप में से बहुत से मसीह होने का दावा करते हैं, परंतु आपने अनुभव किया कि सदा कुछ कहीं पर है जो आपके पास नहीं है। आपने सारे धार्मिक कार्यकलाप किए होंगे, आप चिल्लाए होंगे, आपने सारी चीजें की होंगी, आत्मा में नाचे होंगे, अन्य भाषाएं बोली होंगी, और इसके विरोध में कोई कुछ गलत नहीं बोल सकता। ये सत्य है, ये सब अच्छा है, परंतु देखिए, ये आत्मा से रहित आत्मा के वरदान है। यदि इसमें आत्मा होता तो ये अनुभव दोषी ठहराने वाला अनुभव नहीं होता इस प्रकार से। क्या आप वास्तव में निष्कपट हैं, यहाँ इस वेदी पर इस समय विश्वास करते हैं जबकि आप यहाँ हैं? ये वो कार्य है कि आपको स्वतंत्र कर दे, न कि एक आवेग, परंतु वास्तविकता में एक पवित्र विश्वास कि परमेश्वर आपको ग्रहण करेगा और अपने वचन से आपको पालेगा जब तक आप उकाब ना हो जाएं फेम से और उड़ सकें। यदि आप करते हैं और आप चाहते हैं कि परमेश्वर ये करे, अपने हाथ उठाएं। आप जो यहाँ वेदी के आसपास हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रत्येक अपने हाथों को उठाए। अब वास्तव में शांति से मैं पवित्र पुरुष और महिलाओं से पूछने जा रहा हूँ जो वास्तव में परमेश्वर को जानते हैं। ये विचित्र है, उनमें अधिकांश ऐसा प्रतीत होता है कि ये यही मार्ग है कि वेदी की बुलाहट जो अधिकांश मैं करता हूँ सारे पुरुष होते हैं। आप जानते हैं अधिकतर ये महिलाएं, परंतु यहाँ सारे पुरुष हैं। मैं सोचता हूँ वेदी पर एक महिला है आज रात्रि, या हो सकता है दो हों, ये अधिकतर स्त्रियाँ। परंतु जैसे भी हो, मैं समझता हूँ प्रतीत होता है महिलाएं सोचती हैं, मैं उनके विरोध में बातें करता हूँ, बहनों मैं नहीं, तीन मैं विश्वास करता हूँ, किसी ने कहा वे देखते हैं, मैं यहाँ वेदी के ऊपर से नहीं देख सकता। ठीक है, आप में से कुछ पवित्र मसीही हैं, यहाँ आकर और प्रार्थना में मेरे साथ एक मिनट खड़े हों। वेदी पर आप जहाँ भी हैं, इस मंच पर कोई जो वास्तव में परमेश्वर को जानता है, जानता हो कि कैसे यहाँ पर खड़े हों, उनके संग कुछ देर प्रार्थना में, तब हम भक्त मंडली को विसर्जित करेंगे। अब हरेक को पूरी श्रद्धा में रहें, मत छोड़िए, बस यहाँ आकर और आसपास खड़े हो जाएं। आप में कुछ लोग जो इसके सत्य होने का वास्तविक विश्वास करते हैं कि हम दूसरे युग में प्रवेश कर रहे हैं, हम स्वर्गारोहण के युग में प्रवेश कर रहे हैं। आप जानते हैं कि कलीसिया इस दिशा में नहीं जा सकती और ये इससे अच्छी नहीं हो सकती, इसे खराब ही होना है। कितने आप में से ये जानते हैं, आमीन कहें, इसे खराब ही होना है और ये इस प्रकार से नहीं जा सकती। समझे, इसे कुछ होना है और आप बढ़ रही है। मित्रों, ये सत्य है, ये यहोवा यूं कहता है। अब आगे बढ़े पवित्र किए हुए मसीहो, वो आपके अभिलेखों में ढूंढना चाहता है कि ये जो निष्कपटता से आते हैं, आप जो आना चाहते हैं और उनके साथ अपनी प्रार्थना चढ़ाना चाहते हैं, आपके एक भाई और बहन के समान यहाँ वेदी के आसपास आ जाएं, यहाँ प्रार्थना के लिए आसपास कुछ क्षणों के लिए खड़े हो जाएं। कोई और आना चाहता है, यहाँ आसपास में खड़ा हो जाए, उनके बराबर में घुटने टेक ले, बस चल पड़े जहाँ ये लोग, उन लोगों के आसपास आप महिलाएं मिठास और नम्रता के साथ उनके लिए प्रार्थना मांगे। प्रिय परमेश्वर सहायता करें, प्रिय परमेश्वर सहायता करें। मैं सब कुछ छोड़ता हूँ, मैं अपनी नामधारी कलीसिया छोड़ता हूँ, मैं अपना पहला विवाह छोड़ता हूँ, मैं अपना पहला पति छोड़ता हूँ, प्रभु मैं सदा सब कुछ छोड़ता हूँ। आप अपने विचार छोड़ते हैं, क्या आप अपने विचार छोड़ सकते हैं उस परमेश्वर के वचन के लिए? खुदी को मुबारक मुंजी, सब कुछ मैं देता हूँ। वे सब जो अविश्वास करते हैं इस भक्त मंडली में खड़े हो जाएं। आइए इसे हम सब मिलकर गाएं। आप सब देते हैं, इसे गाने के लिए तैयार रहें। अब आप जो वेदी के चारों ओर हैं, यदि आप वास्तव में छोड़ते हैं, अपने हाथ उसकी ओर उठाएं, गाएं, सब कुछ मैं देता हूं। मैं नामधारी कलीसिया छोड़ता हूं, मैं नामधारी छोड़ता हूं, मैं कलीसिया छोड़ता हूं, मैं स्वयं को छोड़ता हूं, मैं अपने विचार छोड़ता हूं। तू जी को मुबारक मुंजी, सब मैं देता हूं। तू जी को मैं वास्तव में आप यहाँ वेदी पर हैं, आप जो यहाँ वेदी के चारों ओर हैं, जिनके लिए प्रार्थना हो गई है, कलीसिया ने आपके लिए प्रार्थना कर दी है, आपने अपने लिए प्रार्थना कर ली है, अब केवल एक ही मार्ग है कि आप बच सकते हैं, वो है विश्वास के द्वारा आप बचाए गए हैं, और वो अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह ने आपसे बातें की हैं, आपको वेदी पर लाया है, आप परमेश्वर की आशीषों को खोज रहे हैं, आप उसके वचन को खोज रहे हैं, आप पवित्र आत्मा को खोज रहे हैं, आप परमेश्वर का पक्ष खोज रहे हैं, और यदि आप वास्तव में कर सकते हैं, अपने संपूर्ण हृदय से इसे दे दें, अब किसी भावुकता को न देखें, सच्चाई को देखें, एक सच्चाई जो आपके हृदय से है विश्वास के द्वारा। प्रभु, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ जो आपका वचन मुझे करने को कहता है, मैं स्वयं को देता हूँ उस सब को जो मुझ में है। यदि आप इसका पूरे हृदय से विश्वास करें, मैं चाहता हूँ कि आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और इस कलीसिया भक्त मंडली की ओर घूम जाएं और अपने हाथ ऊपर उठा लें और हम उनके साथ मिलकर गाएंगे, मैं जो कुछ मुझ में है देता हूँ परमेश्वर, अपने सारे ज्ञान से मैं देता हूँ। यह मंच पर ऊपर आ जाएं, आप जो वेदी पर हैं भाइयों, यहाँ सीधे मंच पर आ जाएं, आप सब ठीक यहाँ पर, और भाइयों और बहनों, अलीसिया यहाँ देखें, देती हैं, प्रभु जानता है कि मैं उसके द्वारा कहाँ ले जाई जाऊंगी, मैं चाहती हूँ कलीसिया, मैं और पवित्र आत्मा चाहती हूँ कि मैं जल्द मर जाऊंगी, यदि जो लेना है। जी हाँ, ये ठीक है, ठीक बात है, क्या आप अपना सब कुछ उसे देती हैं और उसके वचन को? एक बहन यहाँ नामधारी से, उसने कहा वो एक नामधारी से है, मैं उसका नाम नहीं लेना, वो वहाँ कार्यकर्ता थी, परंतु उसने कहा भाई बहन, मैं सच्चाई के लिए बाहर आना चाहती हूँ, मैं इससे कुछ अधिक गहरा चाहती हूँ, समझे, उसके वचन का उल्लेख करूँ, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। अब आप जो मंच पर हैं, अभी आएं, यदि आप हर चीज को छोड़ने को तैयार हैं, जो आप हैं, परमेश्वर के वचन की हर चीज मानने को तैयार हैं, इस सप्ताह किसी ने नहीं बताया कि आपको क्या करना है, अब यदि आप छोड़ने को तैयार हैं, उसके लिए अभी तो अपने हाथों को उठाएं इस प्रकार से भक्त मंडली की ओर, अब आप यहाँ मंच पर हैं, अब हम इसे मिलकर गाएं, सब मैं देता हूँ, हर कोई एक साथ, ठीक है, क्या आपका वास्तव में ये अर्थ है? कहें आमीन, एक बार और आमीन कहें, कहें प्रभु मुझे जांचें, मुझे परखें और मुझे एक अवसर दें, आज रात्रि मैं यही कुछ कर सकता हूँ कि स्वयं को आपको दे दूँ। आप मेरे हृदय की भूख को जानते हैं, आप मेरी इच्छा को जानते हैं। आपकी प्रतिज्ञा है कि आप उस इच्छा को पूरा कर देंगे। अब मैं इसे स्वीकार करता हूँ और आपको स्वयं को देता हूँ। अब मिलकर
Thank you.